ہوں. جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے بیسیکلی فلسفے کے مقاصد کے اوپر, تو میں نے ایک آرگیومنٹ یہ دیا تھا کہ دیکھیں کمیونسٹ مینیفیسٹو موجود تھا لہذا سوشلزم کی کریٹک کرنا آسان تھا. آپ نے وہ کانسٹیٹیوشن سامنے رکھا کمیونسٹ مینیفیسٹو, اس میں دیکھ لیا کچھ سبسٹینٹیو آرگیومنٹ ہے, سبسٹینٹیولی آپ نے کریٹیسائز کیا, اور مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں نے اس کی بڑی تفصیل سے کریٹک کی. خاص طور پہ اگر آپ مارکسزم کی ایران کے اندر دیکھیں تو متاخرین نے اس کی بڑی سبسٹینٹیو کریٹک کی, سارے اوریجنل ٹیکسز سے لے کر, یعنی کہ مارکس کے سارے اوریجنل ٹیکس آپ کو ملیں گے, کئی والیوم بکس ہیں مارکسزم پر لکھی, اور یہ کہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئی پھر بعد میں, اور یہ کہ اینٹی مارکسسٹ تھا وہ, اور ایونچولی اس کو پوجا پارٹی نے ہی شہید کیا. جو کتاب وہ لکھ رہے تھے سوسائٹی اینڈ ہسٹری اینڈ سوسائٹی, وہ لکھتے ہوئے شہید کیا پوجا پارٹی نے. لیکن یہ کہ لبرل کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے, لبرل مینیفیسٹو نہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر میں نے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی, تو میں نے کہا کچھ ایسا مٹیریل اویلیبل ہو جائے جو پیش کیا جا سکے اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ ایکچوئل لبرل پوزیشن کیا ہے. تو اس میں ایک آدمی ہے جان ہاسپر, HOSPER, یہ بڑا یعنی کہ لبرل تھنکر ہے, بڑا پڑھا لکھا اور بڑا یعنی کہ بہت اچھی طرح آرگیو کرتا ہے. اور اس نے اس کا ایک آرٹیکل مجھے ملا جو اچھا آرٹیکل ہے, بڑا آسان لکھا ہوا ہے, بالکل اس نے کوئی ریفرنسز وغیرہ بہت زیادہ اس میں استعمال نہیں کیے, زبان بھی اس کی بڑی آسان ہے زبان لکھنا. اس کا نام ہے لبرل لبرٹیرین کانسٹیٹیوشن, دا لبرٹیرین مینیفیسٹو. تو لبرٹیرین مینیفیسٹو یا لبرٹیرین کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے آئیڈیاز ہیں, صحیح ہے, لیکن ان میں سے ایک آئیڈیا جو ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے, اور پھر اگر وقت بچ گیا آج نہیں تو پھر نیکسٹ میں پھر ہم وہ پورا آرٹیکل کمپلیٹ کریں گے. جو اس کے اندر جو انٹرسٹنگ آئیڈیا لگا جو میں نے نہیں دیکھا تھا, ہاسپر کو میں نے پہلی بار ہی میں نے اس کا کوئی چیز پڑھی, تو اس میں ایک ٹرم وہ استعمال کرتا ہے مورل کینبلزم. مورل کینبلزم, کینبل اس آدمی کو کہتے ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں, اسے کینبل کہتے ہیں. اور کینبلزم جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسے معاشرت کو بھی کہتے ہیں, یعنی کہ جو کہ انسانیت کے جو اسٹیبلشڈ معیارات ہیں ان پہ پوری نہ ہو سکتی ہو, اور تقریباً جانور ہو جیسی ہی ہو تو اسے بھی آپ کینبلزم کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ ایک معاشرتی طرز زندگی ہو جس کے اندر اسٹیبلش انسانی روایات جو کہ مختلف تہذیبوں میں مسلمہ ہو ان کی پاسداری نہ کی جاتی ہو, ان کی نفی کی جاتی ہے, تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ کینبلزم ہے. ایک ایسا رویہ زندگی کی طرف جس میں انسانی قدروں کی پامالی جو ہے وہ معاشرتی عمل کا ایک جز ہو یا جز لائن پر ہو, یعنی کہ اس معاشرے کی ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک کیا ہو, اعلیٰ انسانی قدروں کی پامالی, اور اس کے باوجود وہ لوگ معاشرتی سطح پر ایک ساتھ رہتے ہوں, تو بھی ہم اسے عام اگر آپ کوئی ویسٹر کی ڈکشنری وغیرہ میں دیکھیں تو کینبلزم کے ایک یہ معنی بھی ہے. ایک تو یہ کہ آپ انسانوں کو کھا جاتے ہیں, ایک یہ کہ آپ اعلیٰ عرفہ انسانی قدروں کی نفی کرتے ہیں معاشرتی عمل کے ذریعے, اور معاشرتی تعلقات اس پامالی انسانیت کو برداشت کرتے ہیں اور ویلیو بھی کرتے ہیں, یعنی کہ اسے قابل قدر جانتے ہیں کہ ہم نے ان ویلیوز کو پامال کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسی ویلیو سٹرکچر رکھتے ہیں جو کہ اعلیٰ عرفہ انسانی قدروں کو جنہیں مختلف تہذیبوں میں ویلیوبل سمجھا جاتا ہے پاسداری نہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ پہچانے, اس چیز کو بھی ہم کینبلزم کہتے ہیں. مورل کینبلزم سے وہ کیا مراد لیتا ہے تو پہلے میں یہ بتاؤں گا, اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس کا لبرلزم کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. جی ہاں ہاں رضا, تم شعبہ دسویں کو تعلیم ہیں بس اسلامک ڈپارٹمنٹ کے سامنے جو وہ ہے نا ڈینز آفس, اس کے اپوزٹ ہے, ایوننگ ڈائریکٹر ایوننگ پروگرام کے اپوزٹ. آ جاؤ
अच्छा, तो पहले ये बताऊंगा कि मॉरल कैनिबलिज्म से क्या मुराद ली जाती है, फिर बताऊंगा कि उसका लिबरलिज्म के साथ या लिबर्टेरियनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, और फिर आपको ये बताऊंगा कि लिबरलिज्म बुनियादी तौर पर जो दावा करती है उसकी नफी करती है खुद ही। अगर एक इंसान को, अभी भूल जाए लिबरलिज्म वगैरह सब चीजों, एक इंसान को अगर उसकी मर्जी के बगैर किसी अमल पर या किसी आइडिया की एक्सेप्टेंस पर मजबूर किया जाए, गो के वो नहीं चाहता वो करना या वो नहीं चाहता उसे कबूल करना, तो आप इस अमल को कैसा समझेंगे? ये क्या किस तरह की चीज है, ये किस तरह की एक्टिविटी है? एक आदमी एक काम नहीं करना चाहता और आप उसको जबरदस्ती वो काम करवाएं, या एक चीज वो कबूल नहीं करना चाहता, एक ख्याल है या आइडिया है या कोई पोजीशन है, उसे वो कबूल नहीं करना, उसको जबरदस्ती कबूल करवाएं, तो इसे आप लोग क्या समझते हैं, इसे आप क्या समझेंगे, इसे आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? सही है, समझ में आ गया हमारा क्वेश्चन? एक आदमी एक अमल पे तैयार नहीं है, एक काम नहीं करना चाहता और आप उससे जबरदस्ती करवाएं ये काम जबर के तहत, या एक चीज वो कबूल नहीं करने पे तैयार और जबर के जरिए उसको कबूल करवाई जाए, इसे आप किस तरह लेते हैं इस एक्टिविटी को? सब अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, सही है ना? फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा और फिर मैं बताऊंगा जो लिबरल प्रोसीजरलिज्म है, ये तुम रखो, मैं एक एक्स्ट्रा गिर गया, वो आपको निकालना पड़ेगा खाली। अच्छा ठीक है, चले अब मैं सिर्फ, हाँ आप रिस्पॉन्ड करें।
अगर का मामला है तो ये तो मामले की नोयत अलग हो जाती
है, माशरती
कोई निजाम इस तरह कर रहा है तो उसकी नोयत बिल्कुल अलग है।
सही है,
अगर निजाम इस तरह करता है तो हर निजाम की मजबूरी होती है।
ठीक है, के वो
तो उसके जितने अंडर में लोग काम कर रहे होते हैं उस निजाम के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो उनको तो मालूम भी नहीं होता कि उनको कोई चीज उसके और मजबूर किया जा रहा है मानने पर, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो ये उसको पता भी नहीं होता।
फर्ज कर लेते हैं कि उसे पता है,
अगर
आप फर्ज कर लें कि उस बंदे को जिससे करवाया जा रहा है उसे मालूम है कि मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, लेकिन उसे फिर भी करवाया जा रहा है,
किसी ने किसी की तो उस पर राजी होगा
नहीं, आप वो राजी हो जाए, आपको ये अमल अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, पसंद रहेगा नापसंदीदा होगा, आप इसके बारे में वैल्यू जजमेंट चाहिए।
मैं सिस्टम करवाया है
तो वो अच्छा अच्छा
जरूरी होगा,
ओपिनियन की बात हो रही है, आप अपना ओपिनियन सिर्फ इतना दें कि ये जो उससे काम करवाया जा रहा है आपके ख्याल में ये ठीक है या गलत है या ये जबरदस्ती है या जबर है या क्या, आप एक फलसफियाना तय कर रहे हैं, आखिर में खुद बखुद आएंगे
आपको, आप सोचिए आपको जैसी पता चला
लिबर्टी के खिलाफ है।
सब बताइए, आप बताइए,
हरी भाई
आप
सर, डिपेंड करता है कि काम भी क्या है, लेकिन सर
नहीं ठीक है, नहीं तुम बताओ
काम किस नोयत का है, ये इससे पहले तो ये उसकी जो जजमेंट में बाद में है, लेकिन काम क्या है जिसके ऊपर उसको मजबूर किया गया है,
तो अगर फर्ज किया तो काम की नोयत अगर पता चल जाए तो क्या
उससे थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा कि जो शख्स को मजबूर किया जाए हालांकि वो सही भी था या नहीं था।
अच्छा, तो तुम ये कहते हो कि काम की नौबियत जब तक नहीं पता चलेगी मैं कोई जजमेंट पास नहीं करूँगा।
जी हाँ,
ये तुम्हारी पोजीशन
ठीक, मेरे ख्याल किसी भी किस्म कोई भी हालात हो, चाहे आपको पता भी हो कि आगे वाला सही है बिल्कुल सही है और आपको बिल्कुल पता है कि आप गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो नहीं करना चाह रहा
नहीं कर
हम तो वो फोर्स नहीं करना चाहिए
फोर्स नहीं करना चाहिए
जब अपराध के ऊपर अगर दो पढ़ लोगों वाम जिस तरह तो मतलब वो जबर है मगर अगर कोई इसलिए हामी है इस तरह का है बातचीत ऐसी कि मजहब के मतलब
अच्छा तो फिर तुम्हारे ख्याल में ये कंडीशनल हो जाएगा जैसे तुम्हारा
नाम कंडीशनल
क्या नाम क्या है आंसर कह रहा है आंसर कह रहा है मुझे पहले पता चले कि किसके लिए तो फिर मैं जजमेंट दूंगा लेकिन तुम कह रहे हो कि दो फर्द का मामला है दो इंडिविजुअल तो जबर है वो मुनासिब
नहीं जी
और अगर वो इलामी जैसे बात मजहब में भी होती है वो हम पे गई है हमसे ज्यादा सुनी रही होता है तो वो तो फिर अलग
मामला है तो फिर हमें करना है ठीक है तुम बताओ ठीक है तो तुम ये गलत है चलो भाई तुम बताओ
जैसे ये कि बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा अगर उसे हम थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब उसके हिसाब से अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं बच्चे को
पढ़ना चाहिए ठीक है अगर पढ़ाने का नहीं कोई और चीज का मामला हो ठीक है तुम्हें ये पता चले कि कहीं पर ऐसा हुआ तो तुम उसके बारे में डिस्टेस्टफुल होगे तुम्हें बुरा लगेगा तुम्हें अच्छा लगेगा समझोगे नहीं गैर मुनासिब तुम कहो ये एक रेलिवेंट बहस है
और वो इलमी के हाथ उसको टैकल करेगा सामने वाला लेकिन अगर एक नॉर्मल एक ले मैन को कहा जाए उस पर फोर्स किया जाए कोई आइडिया या कोई एक्ट तो फिर सामने वाला गलत नहीं है क्योंकि जो ले मैन है वो तो हर आइडिया को हर एक्ट को भूल करेगा और शायद वो उसके केस को ना अच्छा लगे लेकिन वो लेकर केस में समझ लेगा कि नहीं मेरे अच्छा है तो डिपेंड ये करता है कि आप सामने वाले की पोजीशन क्या है नॉलेज के पर और जो इम्पोज कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है
तुम
तो ये डिपेंड करेगा कि आइडिया को डिपेंड करेगी कि आइडिया है अगर जिस आइडिया का हम यूज कर रहे हैं अगर उसको उसकी इम्पोजिशन हो रही है चाहे ना पसंद है ना पसंद है तो हमें
ठीक है आइडिया जो है जबर को जायज या नाजायज करार दे ये क्या है ठीक है ठीक
है
तो जिस भी इम्पोज किया जा रहा है मेरे को कोई दलील नहीं पेश कर सकते कि मेरा नजरिया ये है तुम जो कह रहे हो फिर तो वो है फिर भी इम्पोज करेगा जब तक जबर होगा लेकिन अगर वो मान लेता है कि तुम जो कह रहे हो सही है मेरी गलती के बारे में तो
मेरे ख्याल में सही है जबर होगा
ठीक है
सर मैं जो उससे पहले डिस्कशन हुई थी ना मॉरल कैनिबलिज्म और फिर एक मास्टर का हुआ था सोसाइटी भी जबर करती है जैसे आपने कहा कि एक आदमी को होता है जबर और वो मतलब आप सोसाइटी के खिलाफ जाना चाह रहे थे तो सोसाइटी आपको जबरन अपना स्ट्रक्चर रखने के लिए करती है तो उसमें तो सही है उसमें सोसाइटी जो अपना एक उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है वो उसको मेंटेन रखना चाहती है और उसमें एक पर्दे वाले का अगर कोई अड़ी कर रहा होता है तो वो सही करना एक ट्रेडिशनली भी होता है और वो जो सोसाइटी होती है उसको चलती है
ठीक है अब देखें अगर आप ये कहते हैं कि मैं जजमेंट पास करूंगा इस कंडीशन को डिस्कस किए बगैर कि जबर की कॉज क्या है ठीक है तो इसका मतलब है आप लिबर्टेरियन मैनिफेस्टो को मानते हैं अगर आप कहते हैं कि मैं इस सवाल से बहस नहीं करूंगा कि किस लिए जबर, लेकिन जबर इन इटसेल्फ ठीक नहीं। तो इसका मतलब है आप लिबरल या लिबर्टेरियन मैनिफेस्टो का एक कंडीशन कबूल करते हैं, और अगर आपने कहा इसे हम कहते हैं प्रोसीजरल फ्रेमवर्क, प्रोसीजरल जो फ्रेमवर्क होता है वो प्रोसीजर से बहस करता है, प्रोसीजर की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर फर्ज किया कि मैं कहता हूं कि हम लोग सब बैठ के जुआ खेलें, हम लोग सब जुआ खेलें, और जुआ खेलने के नतीजे में जो भी हार जाए, फर्ज किया कि हमने हार और जीत के भी तायुन कर लिया कि सिक्का फेंकेंगे और आप पूछेंगे चांद या छाप जो भी, और अगर छाप आ जाए तो आप हार जाएंगे, और चांद आपने कहा और चांद ही आ गया तो आप जीतेंगे। बहुत सिंपल हमने रूल बना लिया और हमने जुआ खेलना शुरू किया, और उसमें जो जो हारता गया वो जो है वो अपने पैसे देते चले गया, और जो सब के पैसे जी दिया वो शराबत जलाया, सबने उसे गले मिल के उसे रुखसत किया, उसको नेक तमन्नाओं का रुखसत कर दिया। तो हम लोगों ने जुआ खेला ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से जुआ खेला, किसी ने बेईमानी नहीं की, किसी ने सिक्के को बीच में फंसाया नहीं, बल्कि उसको चपका ही रखा, और जो आ गया उससे हार रहा था या जीत रहा था उसने उसको एक्सेप्ट किया। तो आपने इसमें क्या क्वेश्चन नहीं किया और क्या क्वेश्चन किया? गुडनेस विद इन द फ्रेमवर्क, ऑनेस्टी विद इन द फ्रेमवर्क, ऑनेस्टी विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ द रूल्स दैट हैज बीन डिटरमाइंड द प्रोसीजर। आपने कहा अगर तयशुदा उसूलों के मुताबिक कोई आदमी काम करता है तो हम उसे ऑनेस्ट आदमी मान लेंगे। तयशुदा उसूलों के मुताबिक अगर कोई आदमी बिहेव करता है तो हम उसे मॉरल मान लेंगे। तयशुदा उसूलों के मुताबिक अगर कोई आदमी तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे मॉरल इंसान तसव्वुर करते हैं। इस प्रोसीजर की जस्टिफिकेशन क्या है? हम जुआ खेल ही क्यों रहे हैं? जुआ इन इटसेल्फ अच्छा होता है या बुरा, ये सवाल प्रोसीजर फ्रेमवर्क में उठाया ही नहीं जाता। आप ये सवाल ही नहीं उठाते कि जुआ खेलना इन इटसेल्फ सही है या गलत है। यानी कि प्रोसीजरल फ्रेमवर्क उस वक्त फंक्शनल होता है जब आपने उस प्रोसीजर को मान लिया विदाउट क्वेश्चनिंग द रैशनल ऑफ द प्रोसीजर इन इटसेल्फ। ठीक है, हम सब जब जुआ खेलने आए, इसने कहा भाई मैं तो जुए को हराम समझता, जुआ तो नहीं खेलना चाहिए, तो असल में इसने अटैक किससे किया है? हमारी ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी पे नहीं, उस कंडीशन को ही अटैक कर दिया जिसकी बुनियाद पर हम उसूल अदा करना चाहते हैं जुए के। और ये हम कह रहे हैं चलो भाई तुम भी आ जाओ शरीक हो जाओ, जुए के उसूल हम तय कर रहे हैं। इसने कहा भाई जुए पे तो मैं लानत भेजता हूँ, जुआ क्या मतलब, उसूल क्या मतलब? नहीं, हम लोग ऑनेस्टी के साथ जुआ खेलना चाहते हैं ताकि ऑनेस्टी के साथ जो प्रॉपर्टी हो ट्रांसफर हो और कोई झगड़ा वगैरह ना हो। वो हम तो कहेगा कि ये तो प्रोसीजर है ना भाई, प्रोसीजर तुम तय कर रहे हो कि जो हराम माल आएगा वो किसके पास जाएगा, तुम ये तय कर रहे हो। इसका खैर शर से क्या ताल्लुक है? तो मैं तो इसे खैर मानता ही नहीं। तो फिर ये जो प्रोसीजरल फ्रेमवर्क की जो कंडीशन है उसे क्वेश्चन कर दिया। इसी एग्जाम्पल को अब आप अप्लाई करें कि अगर कोई आदमी कहता है जबर इन इटसेल्फ बुरा है तो आप फिर ये बहस करेंगे अच्छा कि कौन सा प्रोसीजर इख्तियार करें जिसमें कम से कम जबर हो, कौन सा ऐसा प्रोसीजर इख्तियार किया जाए जिसमें कम से कम आजादी हो। तो वो एक आदिलाना निजाम होगा जिसमें किसी फर्द के ऊपर कोई भी फर्द या माशरा या रियासत जबर ना कर सके या जबर करने के इम्कान कम से कम होते 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 खत्म हो जाए, तो हम उस निजाम जिंदगी को, उस माशरती जिंदगी को, उस सियासी जिंदगी को आदिलाना सियासी जिंदगी। इसका मतलब है कि अदल को आप कंडीशन कर रहे हैं किससे? जबर की अदम मौजूदगी से, है? लेकिन कोई आपसे पूछे कि जबर इन इटसेल्फ अदम की अदम मौजूदगी इन इटसेल्फ मॉरल है या नहीं, तो कहेंगे नहीं ये तो बहस नहीं हो सकती। पहले तो आपको मानना पड़ेगा जबर इन इटसेल्फ बुरा होता है, बात समझ आई? तो पहली शर्त यह कि जब आप किसी चीज के ऊपर वैल्यू जजमेंट पास करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग द गुड, विदाउट क्वेश्चनिंग द असम्पशन कंसर्निंग द गुड दैट हैज बीन प्रिज्यूम्ड इन द प्रोसीजर, उस वक्त तक आप अपनी पोजीशन वाजे नहीं करते। जैसे इनको भी ये इतराज था
कि भाई को किस नौयत में मैं जबर हो रहा है, ये फर्द की नौयत पर हो रहा है, माशरती सतह पर हो रहा है, इदारती सतह पर हो रहा है, किस सतह पर हो रहा है। जाहिर है कि इनके जहन में यही होगा कि वो तसव्वुर खैर माशरती सतह का है, इदारती सतह का है, इल्हामी सतह का है, जैसे इन्होंने भी इस्तेमाल की। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के जहनों में ये होता है कि देखो भाई कोई भी एक्शन जो होता है उस उसूल की बुनियाद पर जायज या नाजायज करार दिया जाता है, अपने नतायज की बुनियाद पर नहीं, उसूल की बुनियाद। किस उसूल की बुनियाद पर तुम जबर कर रहे हो और किस उसूल की बुनियाद पर तुम जबर नहीं कर रहे। तो जबर इन इटसेल्फ बामायने है या बेमायने है, ये जबर इन इटसेल्फ से पता नहीं चलेगा, बल्कि जबर के लिए इख्तियार किया गया उसूल तय करेगा कि जबर इस मामले में जायज है और इस मामले में नाजायज है। मसलन लॉ के एक बड़ा जबरदस्त लिबरल थिंकर, वो कहता है कि बच्चों को हम आजादी नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि वो इंसान नहीं बना मुकम्मल, ही इज पोटेंशियल ह्यूमन बट ही इज नॉट ह्यूमन, कंप्लीट ह्यूमन नहीं है। इसलिए उसने पेरेंट्स के ऊपर जो लिखा है, 70वीं सदी का आदमी है, लिबरल आदमी है, लेकिन कहता है बच्चे जो है वो काबिल नहीं होते कि उनको आजादी दे दी जाए उसी तरह जिस तरह एक अडल्ट को दी जाती है। लिहाजा जब तक के वो स्टेट ऑफ नेचर, वो सिविल सोसाइटी का मेंबर बनने काबिल है, उस वक्त वो एब्सोल्यूट फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि वो इस काबिल नहीं है। लिहाजा पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि उसका नजर रखें, उसकी ऊपर जबर करें और बहुत सारी चीजों में जो चर्च कहता था उसको सपोर्ट करता था, तो लोग उसको कंडेम करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर उसकी जो असल अंदर से अगर आप बहस पढ़ें तो कब इंसान अडल्ट बनता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है लॉ के सिस्टम में। इंसान उस वक्त अडल्ट बनता है जब वो प्रॉपर्टी हैंडल करने काबिल होता है। तो फंडामेंटल राइट किसे मिलते हैं? जिसके पास प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चे पास क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए फंडामेंटल राइट उसके पास नहीं होते। अच्छा, तो फिर गुलाम के पास, स्लेव के पास, उसके पास भी प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके भी फंडामेंटल राइट गारंटी नहीं होती। और औरत के पास, अगर औरत के पास प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, तो फंडामेंटल राइट उसको मिलते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी होती है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप सुपरफिशियली लॉ को पढ़े तो आपको लगा माशाल्लाह बड़ा अच्छी बात है, समझ लिया। तो आपको समझ में नहीं आया कि क्रिश्चियन थिंकर थे उस जमाने के, इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे लॉ को? इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहते हैं तुम प्रॉपर्टी के साथ क्यों लिंक करते हो खैर को, और हक के इजहार को प्रॉपर्टी के साथ क्यों लिंक करते हो? प्रॉपर्टी हो नहीं हो, क्राइस्ट के पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? देखो एक कुछ भी नहीं था। तो फिर प्रॉपर्टी अडल्ट फ्रेंचाइज जब तुम करते हो तो इसका मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज क्यों करते हो? कि ही इज केपेबल टू हैंडल प्रॉपर्टी। लेकिन स्लेव को तो नहीं था 18वीं 70वीं सदी के अंदर, तो वो तो फ्रेंचाइज नहीं होते। बात समझ आ रही है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो फंडामेंटल राइट गारंटी कर रहा है किससे गारंटी कर रहा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो आप अगर इस सवाल से बहस ही नहीं करते कि भाई जबर क्यों हो रहा है, तो दरअसल दूसरा काम आप ये करते हैं कि खैर दरअसल कुछ होता नहीं, खैर कुछ होता ही नहीं, जबर करने का क्या सवाल है? ये खैर किसी भी चीज को समझता हो भाई, ये भी किसी चीज को, वो भी किसी चीज को, ये भी किसी चीज को। खैर फर्द का इंफिरादी मामला है, चूंकि खैर फर्द का इंफिरादी मामला है इसलिए जबर का क्या सवाल है? और फौरन हमारे मजहबी लोग भी कह रहे हैं ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर। अभी एक आयत से आपने पूरे 1500 साल की पॉलिटिकल थियोरीज को जस्टिफाई करके 1500 साल में डेवलप हो उसके लिए एक हदीस पेश, एक आयत पेश कर, और वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म जो है वो जस्टिफाई हो जाता है। इकराह फी दीन, क्या ला इकराह फी दीन जो है सबके लिए होगा? एक आदमी खोला और कहा कि मैं हूँ प्रॉफिट, तो मुसलमान ने क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उसे कहा नहीं भाई ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। ये कहता पैगंबर फतवा हो सकता हो, जिस तरह हमारे कहते हैं पैगंबर हुज्जत है, और कह रहे हैं मैं हूँ पैगंबर। फिर वो औरत और वो दोनों मिल गए, शादी कर ली उन्होंने, मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने किस औरत की शादी की थी, वो भी कहती है मैं खुदा हूँ, वो पैगंबर हूँ। तो उन दोनों ने फिर आपस में शादी कर ली, बहुत बड़ी पावर हो गई उनकी, लोग भी उनके साथ। तो उनको क्या किया? जबर नहीं किया उनके साथ?
का जो काबू में कत्ल कर दो, उसको कत्ल किया, 17 लश्कर बनाए, बड़े बड़े टॉप जो सहाबा है ना उनके अंडर कमांड दी और उन्होंने तलवार चलाई उनके साथ जाकर। तो बताने का मतलब ये कि आप जब ये कहते हैं लिबरल परसेप्ट बहुत गलत काम किया, लिबरल परसेप्ट में गलत काम क्यों, इसलिए गुड कुछ होता ही नहीं ना। प्रॉफिट कह रहा है कि इट्स अगेंस्ट द विल ऑफ द गॉड, इफ इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द गॉड दैट्स योर पर्सनल चॉइस, दैट्स योर पर्सनल क्लेम, वाई शुड आई एक्सेप्ट इट। हाँ, तो बताने का मतलब ये कि आप जब जबर को क्वेश्चन नहीं करते, जबर को क्वेश्चन नहीं करने का मतलब ये कि जबर इंट्रिंसिकली बैड है, तो इसका मतलब ये है कि गुड पर्सनल होता है, लिहाजा उस गुड को रिस्टोर करने के लिए जब आप कोई कुव्वत इख्तियार करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो बुनियादी तौर पर आप क्या करते हैं, इस बुनियादी कलमे की नफी करते हैं कि खैर फर्ज का इंफरादी मामला है। बात समझ आ गई? तो दूसरी बात, अगर तुम ये कहते हो कि खैर फर्ज का इंफरादी मामला है तो फिर जबर का क्या सवाल है? जबर की तो एक दलील होगी कि खैर कोई चीज होती है, ये आदमी खैर को वायलेट कर रहा है इसलिए इसको जबर किया जा रहा है, इसलिए इस पे जबर किया जाएगा, खैर को वायलेट कर। अगर आप कहें खैर कुछ होता ही नहीं, तभी तो आप ये कहेंगे कि खैर इंसान का पर्सनल चीज चॉइस है, पर्सनल चीज है। जैसे एक बड़ा मशहूर जर्मन प्रीस्ट है जिसके ऊपर काम किया था हाइडेगर का पीएचडी जो है उसी जर्मन पोप के ऊपर, प्रीस्ट के ऊपर बिशप था, वो कहता है ह्यूमन इज अ डीमॉन, द वर्ड ह्यूमन इज अ डीमॉन, ह्यूमन एक ऐसा इंसान होता है जो सेल्फ गवर्न ऑटोनोमस होता है। सेल्फ गवर्न ऑटोनोमस बीइंग कैसी बीइंग होती है जो बताती है कि वो खैर को अपनी इंफिरादी हैसियत में डिफाइन करने के काबिल हो। तो वो तो चूंकि प्रीस्ट है, वो कहता है खैर को फर्द अपनी इंफिरादी हैसियत में डिफाइन करने के काबिल नहीं है। अगर वो बाइबल को वायलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने इंसान होने को नहीं पहचाना, उसने पहचाना नहीं अपने आप को। खुद यानी कि क्रिश्चियनिटी में हजरत ईसा को खुदाई की ही एक फॉर्म है ना, डाइटी है, वो खुद ही आके बता रहा है कि तुम ये नहीं करो और ये करो, उसके बावजूद कह रहा नहीं मैं तो नहीं मानता इसको, तो इसका मतलब फिर वो नहीं पहचाना अपने आप, नहीं पहचान रहा वो अपने आप को, तो फिर वो इंसान नहीं रहा, उसको तो पहले इंसान बनना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा, फिर उसके साथ सब कुछ होगा। तो वो कहता है ह्यूमन इज अ डीमॉन, डीमन हो जाता है वो, जो कहता है ना मैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है और टेन कमांडमेंट में क्या लिखा हुआ है, मुझे इससे कोई फर्क, मैं तो खुद ही बताऊंगा। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट में वो है, तो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर किस चीज का मैनिफेस्टेशन है, सेटनिज्म का, अकॉर्डिंग टू प्रीस्ट फ्रांसिस। वो ये कहता है कि वो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। तो दूसरी चीज ये होगी कि जब मैं ये कहता हूं कि इन भाई का गुड और इन भाई का गुड और इन भाई का गुड और इन भाई का गुड सब बराबर है, तो दरअसल मैं क्या कह रहा हूं, दो बातें कह रहा हूं, कई बातें कह रहा हूं लेकिन दो बातें तो क्लियरली कह रहा हूं। नंबर वन, मुझे नहीं पता गुड क्या होता है, तभी तो मैं कह रहा हूं सबके तस्वूर खैर बराबर है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि मुझे नहीं पता लिहाजा मैं इनमें कोई तरतीब वजह नहीं कर सकता और मुझे तरतीब वजह करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है खैर क्या है। जब मुझे पता ही नहीं तसव्वुर खैर क्या है तो इसका नतीजा ये होगा कि तमाम तसव्वुरात खैर यकसा सतह पे चले जाएंगे, और अगर मैंने कोई तरतीब की ये जाने बिना कि तसव्वुर खैर तीन हफ्ते ही क्या है तो मैं क्या करूंगा, जुल्म करूंगा। तो जुल्म क्या है, किसी चीज को बगैर जाने हुए तरतीब दे दो, बगैर जाने तरतीब देना मॉरल कैनिबलिज्म है। मॉरल कैनिबलिज्म क्या है, कि किसी चीज को कदर की सतह पर तरतीब दे दूं बगैर जाने कि वो खैर है या नहीं, क्या है खैर ये जाने बिना
کہ خیر کیا ہے, میں اگر ترتیب دے دوں تو اس کے نظر میں کچھ تصورات خیر کو میں پنپنے نہیں دوں گا اور کچھ تصورات خیر کو میں پنپنے دوں گا, تو میں دراصل قتل کروں گا ان تصورات خیر کا جو کہ پنپ سکتے تھے لیکن میں نے انہیں پنپنے نہیں دیا. لہذا میں نے کس طرح کا بیہیویئر اختیار کیا, جس طرح ایک انسان کو دوسرا انسان مار کے کھا گیا, اس کی موت واقع ہو گئی. ایک انسان کے تصور خیر کو میں نے اظہار نہیں کرنے دیا, تو میں نے دراصل کیا کیا, میں نے اس کا گوشت کھایا, میں اسے کھا گیا, اس کی بینگ کو کھا گیا, اس کے وجود کو کھا گیا, اس کو کھا گیا. اور وہ تصور خیر جو کہ بچ گیا, وہ دراصل کیسے بچ گیا, اس لیے نہیں کہ اس میں قوت تھی زیادہ, اس لیے بچ گیا کہ اس نے دوسروں کو کھا گیا, دوسروں کو مار ڈالا. اسے کہتے ہیں مورل کینیبلزم. ہاسپر کہتا ہے ہر معاشرے میں مورل کینیبلزم ہی پروان چڑھتا ہے ادر دین لبرٹیرینزم. ادر دین لبرل آرڈر معاشرے مورل کینیبلزم ہی کا شکار ہوتے ہیں. جیسے کرسچینٹی کے اندر جو کرسچن تصور خیر کے منافی ہوگا, کرسچن اسے برداشت نہیں کریں گے. کیوں برداشت نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے نا کہ یہ خیر ہے, تو کیسے برداشت کرے گا؟ اب اگر تم کو نہیں, جو تمہیں پتا ہے وہ دراصل خیر نہیں ہے, تو کہتے ہیں نہیں, میرے لیے تو بالکل کلیئر ہے کہ یہی ہے خیر, یہی ہے خیر. اس کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے, اپنے مال قربان کرنے کو تیار ہے, اپنی اولاد قربان ہے. کس بنیاد پہ تم پرکھو گے اس کو, اس کی سچائی کو؟ وہ اپنی اولاد کی قربانی دے رہا ہے, مال کی قربانی دے رہا ہے, اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے, اور کیا پیمانہ ہے اس کی کمٹمنٹ کو جانچنے کا؟ تو آپ کو نہیں, دراصل یہ بدماش ٹائپ کے لوگ, مذہبی لوگ جو ہیں بدماش ٹائپ کے, یہ مورل کینیبلزم کا شکار ہے. تو لبرلزم یا لبرٹیرین کانسٹیٹیوشن کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جبر کو فی نفس ہی غلط سمجھیں. یہ سوال اٹھائے بنا کہ جبر کی خیر پیچھے خیر تصور کس تصور خیر کے لیے جبر کیا جا رہا ہے, اگر آپ اس سطح پہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے مختلف تصورات خیر یکساں صلاحیت رکھتے ہیں, یا بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف تصورات خیر حقیقتا تصورات خیر ہے ہی نہیں, تو انسانوں کی چوائسز ہیں. اسے ہم کہتے ہیں کانکیٹینیشن آف ڈیزائر, اپنی اپنی خواہشات کی مختلف ترتیبوں کے کو تم نے تصور خیر کہہ دیا, یعنی کہ تم اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ تصورات خیر کا کوئی الگ آرڈر رکھتے ہو, میں کچھ اور آرڈر کرتا ہوں کچھ اور. تو بنیادی طور پر یہ کانکیٹینیشن آف ڈیزائر ہے جو کہ عمر کے ساتھ, تعلقات کے ساتھ, ایکسپوجر کے ساتھ تب بھی فلکچویٹ کرتی رہتی ہے, کانکیٹینیشن. تو اس کا مطلب ہے خیر ان سینس کچھ نہیں ہوتا. تو پھر ظاہر ہے کہ جب مجھے یہ پتا بھی نہیں کہ تصور خیر کیا ہوتا ہے, اور مجھے یہ پتا یا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تصورات خیر ان سینس کچھ نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو آپ کسی بھی معاشرے کو, کسی بھی مذہب کو, کسی بھی ریاستی ڈھانچے کو اس بنیاد پر قبول نہیں کر سکتے کہ وہ جبر کا کوئی بھی میکانزم اختیار کرے گا. کسی بھی تصور خیر کی اظہار کے لیے لہذا کانسٹیٹیوشن آف لبرٹی یا کانسٹیٹیوشن آف لبرٹیرینزم یا لبرل یا لبرٹیرین مینیفیسٹو کا پری ایمبل یہ ہے کہ آپ آزادی کو بنیادی قدر کے طور پہ قبول کریں, اور آزادی کا مطلب اچھائی اور برائی کے بیچ میں سے انتخاب کرنا نہیں ہے, اچھائی اور برائی میں انتخاب چوائس نہیں ہے. آزادی کا مطلب ہے اچھائی کی ڈٹرمنیشن, اچھائی کی ڈٹرمنیشن کا ہوتا ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ اچھائی ہے یا برائی ہے, ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں آپ, یہ نہیں ہے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن. رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ خیر کیا ہے,
اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ شر کیا ہے. آپ جس چیز کو تصور خیر سمجھتے ہیں اسے پریکٹس کریں, یہ ہے سیلف ڈٹرمنیشن. ٹھیک ہے, سیلف ڈٹرمنیشن کو ایکنالج کرتا ہوں, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ان اٹس ایبسولوٹ سینس ایکنالج کرتا ہوں.
نہیں
نہیں تصور شہر کے تحت نہیں کرتا, تصور حق کی بنیاد پہ. یعنی کہ لبرل یہ نہیں کہے گا کہ دوسری بیوی رکھنا خیر نہیں ہے, وہ کہے گا دوسری بیوی رکھنا پہلی بیوی کے حق کی تلفی ہے, رائٹ کی وائلیشن ہے, گڈ کی اسرشن نہیں ہے, رائٹ کی وائلیشن کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو وائلیٹ کر دیا. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور رائٹ آف پراپرٹی وائلیٹ کرنا ہے. جو رائٹ آف پراپرٹی کا رول تھا وہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا اپلائی کر دیا, تو آپ نے وائلیٹ کیا رائٹ کو, خیر کو نہیں. کوئی بھی آپ کو خیر کی طرف نہیں بلائے گا, لبرل آرڈر کے اندر خیر کی طرف بلانے کا حق نہیں ہے اس کو, وہ آپ کو بلائے گا حقوق کی طرف. اور وہ جب بھی آپ پہ کوئی پابندی لگائے گا اس بنیاد پہ نہیں لگائے گا کہ آپ نے کوئی یہ اچھائی ہے اور یہ اچھائی کرنے کی اجازت نہیں, وہ کہے گا یہ جو تم کر رہے ہو یہ حقوق کی نفی ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی نفی تم کر رہے ہو, اس لیے ہم تمہیں منع کر رہے ہیں. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی نفی کرنے کے نتیجے میں تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے. جس طرح کرسچن کہتا ہے, جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کرسچن ہونے کے باوجود کرسچن ویلیوز کی نفی کر دیتا ہے, ایک آدمی کرسچن ہے کیتھولک ہے اور کہ نہیں میں تو جو ہے مرد سے شادی کروں گا, اور وہ پوپ کے پاس پہنچ جائے وہ اسے بھگا دے گا فور, یہ تھوڑی جائے گا کہ نہیں آؤ میں تمہارا نکاح پڑھاتا ہوں, یہ چلو تم نے کوئی اچھا کام تو کیا, چلو شادی کر رہو, شادی کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے, چلو مرد سے کر رہو اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن چلو میں تمہارا نکاح پڑھاتا ہوں, بھگا دے گا وہ فور, کہ تمہیں شرم نہیں آتی. عورت سے شادی جب تم کر رہے ہو اسے وہ کہتا ہے نیسسری سے نہیں, تم مرد سے شادی کرنے کے لیے آ گئے, وہ تو فوراً بھگا دے گا, بھگا دے گا. تو اس نے بھگانے کا مسئلہ یہ کہ وہ کہے گا یہ تمہیں شادی کرنے کا تمہیں ہم رائٹ دیتے ہیں لیکن یہ رائٹ گڈ آف کرسچینٹی کو وائلیٹ کر رہا ہے, اس لیے یہ خیر نہیں ہے, اس لیے ہم تمہارا یہ حق تسلیم نہیں کرتے, بات ہو جاتے ہیں. لبرل آرڈر میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہوموسیکشوالٹی کو جائز نہ قرار دیا جائے, لیکن اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہوگی کہ ہوموسیکشوالٹی گڈ نہیں ہے, وہ کہے گا ہوموسیکشوالٹی فنڈامینٹل رائٹس کی وائلیشن, وہ رائٹ کی بنیاد پہ کہے گا کہ وہ جب بیوی کون ہوگا, ان دونوں میں سے بیوی کون ہوگا, بھائی میں بیوی بنوں گا, تو اس کے بیوی کے وہ رولز الگ اپلائی ہوں گے نا. بیوی اگر طلاق مانگے تو اس کو آدھی پراپرٹی مل جائے گی, تو یہ کون کہاں لکھا جائے گا کہ کون بیوی تھا کون شوہر تھا, نکاح نامے پہ لکھا جائے گا, تو اس کی کیا کرائیٹیرین ہوگا, نہیں میں تو نہیں میں آج تو شوہر ہوں, تو پراپرٹی رائٹس وائلیشن ہوں گے, پراپرٹی رائٹ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, یہ کیسے بہت پرابلم پیدا ہو جائیں گے. اس لیے ہم عورت اور مرد اور مرد کو شادی نہیں کرنے دیتے, یا عورت اور عورت کو شادی نہیں کرتے. جیسے یورپ میں مردوں کا تو خاص پرابلم ہے, عورتیں جو آپس میں شادیاں کر رہی ہیں اس کے بعد پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو پہلے وہ ایڈاپٹ کر لیتی تھیں بچے, تو وہ وہاں جو کرسچن امریکن جو چرچ ہے وہ اسٹرانگ ہے, تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی بدماشی ہے, تو یہ ایک ایسی طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ کرسچینٹی کی ویلیوز کو وائلیٹ کرتی ہیں, اوپر بھی ایک بچہ بھی اٹھا کے لے آتی ہیں, اس بچے کو بھی اپنا ایسا بدماش بنا دیں گے, تو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے کہا ارے اس چکر میں ہی چھوڑو, ہم خود ہی بچہ پیدا کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو بچہ, تو اس میں تو آپ طے کر لو گے اچھا بھائی یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے, تو مردوں میں کیا کریں گے؟
तो अब वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कोशिश कर रहे हैं मर्द भी बच्चा पैदा करते हैं। अभी उसमें क्लोनिंग के उसमें पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बल्कि एक आदमी आ भी गया है ना मेरे ख्याल में, वही इज इन दी प्रोसेस के वो सब उसे इंटरव्यू कर रहे हैं कि अब आपको कैसा मैसेज हो रहा है। तो तुम जो हो, जो वैल्यू स्ट्रक्चर, अब तुम क्रिश्चियन से करोगे, मुसलमान से पूछोगे, जूस से, वो क्या कहें, ये सेटनिज्म है, खैर वैर का क्या। लेकिन लिबरल ऑर्डर कहेगा देखो हमें तो पता नहीं है ना खैर क्या होता है, हम तो सिर्फ ये देखेंगे राइट को तो वायलेट नहीं कर रहा, हाँ राइट को वायलेट कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे बहुत सारे जो डोनर्स होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज के, जो डोनर्स होते हैं वो कहते हैं कि मेरे, उसके लिए वो कंडीशन लगाते हैं कि ये मेरे जो स्पर्म्स हैं ये इस्तेमाल ना किए जाएं उन जोड़ों के लिए जो कि रिलीजियस मैरिज स्ट्रक्चर में नहीं आते, सही है, उसमें मेरे इस्तेमाल नहीं। अब कौन बताएगा, तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि वहां पर लिबरल ऑर्डर में जब आपको रोका जाएगा किसी चीज के लिए तो खैर को जवाब बना के रोका नहीं जाएगा, बल्कि हक को, हक राइट के सेंस में, राइट की को बुनियाद बना के रोका जाएगा।
स्टेट क्या करेगी कि राइट क्या है, अपने वो कह रहा नहीं मेरा राइट तो है कि मैं बेचूंगा वोट दूंगा, मैं गरीब हूँ और मैं देश के पैसे दूंगा, मेरा राइट तो ये है, तो मैंने, मैं प्लेयर सीखिंग नहीं मानू तो मैं तो प्लेयर इस तरह ठीक कर रहा हूँ,
सही है,
क्या राइट जो है मतलब वो खुद के बगैर क्रिएट हो सकता है, मतलब
नहीं, मतलब जाहिर है क्या, बुनियादी तौर पर लिबरल ऑर्डर के अंदर हम ये कहते हैं कि एक इम्प्लिसिट कंसेप्शन ऑफ गुड होता है, लेकिन वो आगे की बहस है। लेकिन अभी हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कोई गुड के बगैर वो कोशिश करते हैं, तो राइट सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होते हैं, राइट सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होते हैं, क्योंकि राइट एब्स्ट्रैक्शन में दिए जाते हैं तो फॉर्मल इंडिविजुअल्स के होते हैं राइट। तो सवाल ये कि वो राइट जो कि फॉर्मल इंडिविजुअल का है पर्टिकुलर पे कैसे अप्लाई होगा, ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होता है, उसके लिए पूरा का पूरा लीगल स्ट्रक्चर होता है।
इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या फुट के अगर हो सकती है, मतलब इंटरप्रिटेशन विदाउट फुट एंड विदाउट,
अगर हॉस्पर से आप कहेंगे तो हॉस्पर कहेगा ये इट्स पॉसिबल, हॉस्पर कहेगा पॉसिबल है, या रॉल्स कहेगा कि पॉसिबल है, रॉल्स कहेगा पॉसिबल है, और वो ये कहेगा कि असल जो इंटरप्रिटेशन होगी वो डी ऑन्टोलॉजिकल ही होनी चाहिए, अगर वो ऑन्टोलॉजिकली गवर्न्ड है तो फिर वो अनजस्ट है, जुल्म है, फिर वो आपने जुल्म कर दिया, फिर आपने क्या किया, मॉरल कैनिबलिज्म किया। आपने अगर कहा कि देखो तुम अपना राइट, अपना ये वोट नहीं बेच सकते, क्यों, क्योंकि ये खैर नहीं है, तो फिर आप मॉरल कैनिबलिज्म का शिकार हो गए। अगर आपने कहा देखो तुम वोट बेचना फंडामेंटल राइट की वायलेशन, तो फिर ये मॉरल कैनिबलिज्म है। तो राइट सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन क्यों होते हैं, क्योंकि राइट हमेशा एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स के दिए जाते हैं, जैसे माँ के हुकूक, बाप के हुकूक। अब माँ इन इटसेल्फ माँ तो नहीं होती ना, वो बेटी भी होती है, वो बहू भी होती है, उसके बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप होते हैं। अब क्या वो मुकल्लफ है उस राइट को एक्सरसाइज करने की या नहीं। जैसे अभी चार दिन पहले एक I-10 में इस्लामाबाद में एक औरत ने अपनी बेटी को गिरा कर उसकी गला काट दिया सीढ़ी पे, और पुलिस को फोन किया, मैंने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, नहीं बड़ी जवान यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है बाप जो था वो ऑफिस गया हुआ था, दो भाई छोटे ऑफिस वो स्कूल गए हुए थे, और बहन एक कॉलेज गई, सबका उसने इंतजार किया, सब चले गए, तो वीडियो गिरा के गला काट दिया। उन्होंने कहा भाई ये क्यों किया आपने ये वो, तो उन्होंने कहा कि ये जो है रातों को मुख्तलिफ लोगों को लाती है हमारे ही घर में, और दरवाजा बंद कर लेती है, हमारे पूरे खानदान में इसने बदनाम कर दिया, और हमारी बात भी नहीं सुनती, और बाप ने जो है वो बेटी के नाम घर किया हुआ था कि भाई अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाए तो खानदान वाले कब्जा ना करने, बड़ी बेटी उसके नाम पे घर भी कर दिया था और जायदाद भी कर दी थी, ताकि तो वो एक्सप्लॉइट करने शुरू कर दिया, उसने निकाल दूंगी घर से बाहर। अब वो बाप तो कर चुका, उसके हाथ पैर कट गया, तो वो मोहब्बत से खा गया, बाप जो था सख्त नहीं था,
तो माँ बहुत दिन तक बर्दाश्त करती रही करती रही करती रही, उसने जायदाद के लिए नहीं किया, उसने कहा ये अब हमारी औलाद नहीं रही, ये एक इंसान नहीं रही, हम इसे छोड़ भी नहीं सकते, हम इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, और हमारे खानदान और हमारा ये सब बर्बाद हो गया, लिहाजा मैं इसे कत्ल करके फांसी चढ़ी, क्योंकि मेरी ही औलाद है और बाप तो इसका जो था वो बहुत मोहब्बत करने वाला था, उसे पता ही नहीं, और ये मेरी वजह से ये हुआ है, तो मैं भी मरूंगी और ये भी मरेगी। तो मैं उसने मार दिया। अब अगर उसने मार दिया तो उसने क्या किया, अब आप कहें कि देखो इसने गिफ्ट को वायलेट नहीं किया, उसने राइट को वायलेट किया, यानी कि लिबरल ऑर्डर में जब उस औरत को सजा मिलेगी, इसलिए सजा नहीं मिलेगी कि उसने उसके गुड को डैमेज कर दिया, उसके फंडामेंटल राइट को डैमेज कर दिया। फंडामेंटल राइट क्या था? राइट ऑफ लाइफ था। राइट ऑफ वायलेट को वायलेट नहीं कर सकता एक दूसरा इंडिविजुअल। अगर माँ को एतराज था तो वो पिटीशन दायर करती और उसे जेल भिजवाती या पकड़वाती या कुछ भी करती, लेकिन वो ये नहीं कर सकती कि वो उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो बुनियादी तौर पर उसके साथ सिंपथेटिक नहीं होगा लिबरल ऑर्डर, लेकिन अगर फर्ज किया एक मजहबी माशरा हो वो सिंपथेटिक हो जाएगा औरत का, जैसा कि हो गया इंटीरियर पंजाब के जो की वो फैमिली थी, उन्होंने कहा कि ये जो है अदालत से और इनसे हमारी गुजारिश है माँ की तरफ सिंपथेटिक हो जाए उसके पूरे खानदान वाले। अगर ये बाप नहीं किया होता तो तमाम एनजीओ पहुंच जाती है ना कि ऑनर के लेंगे, तो औरत नहीं मार दिया ना औरत को, और वो बहुत मजहबी फैमिली है वो, और बाप जो है वो मना करता था कि इधर उधर नहीं पढ़ाओ ये करो वो करो, बाहर भी भेजा और ये किया वो किया, अब वो माँ को गिल्ट हो गया मैंने ये क्या किया और मेरे काबू से बाहर हो गई तो उसे मार दिया। अब वो ये कहती है, माशरा ही कह रहा है कि माँ को सजाए मौत ना दो, फर्स्ट डिग्री मर्डर है, बड़ा रूथलेसली उसने कत्ल कर दिया, गले पे छुरी फेरना किसी इंसान के और अपनी औलाद के, तो उसने कहा कि पहले मैंने अपने आप को कत्ल किया है फिर मैंने अपनी बेटी को कत्ल किया, तो मैं जो हूँ मैं तो जिंदा नहीं रहता। लेकिन जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अभी इसके दो बच्चे हैं और बड़ी मोहल्ले में और इलाके में वो बहुत अच्छी औरत है, बहुत लोगों की खिदमत करने वाली, लोगों का ख्याल करने वाली, उसके घर में वो कहते हैं कि इसके घर में शैतान पैदा हो गया था, तो उसने बर्दाश्त किया कई साल तक और वो उसकी अंदरूनी जंग और उसको ठीक करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, मन्नतें मांगी, रोजे रखे, उसको लेके गई ये वो, जब वो नहीं काबू आई तो उसने कहा मैं इसे मार ही दूंगी अपनी ही औलाद। तो वो माशरा क्या कह रहा है, माशरा कह रहा है कि इसे ठीक किया, ठीक है। लिबरल माशरा जो कहेगा कि जितना भी गुड हो राइट को वायलेट कर दिया, बात समझ रही है, तो यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती है फॉर्मली वो गुड गवर्न्ड होती है, जो राइट गवर्न्ड होती है, राइट गवर्न्ड जो होती है उसमें किस वजह से कत्ल किया इररेलेवेंट हो गया, बिल्कुल इररेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि क्या राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लाइफ वायलेट तो नहीं हो गया, अगर वो वायलेट हो गया तो आप सिंपथेटिक नहीं हो गए। अच्छा, रिलीजियस माजरों के अंदर वो वायलेट अगर हो गया तो फिर सजा मिलेगी आपको, लेकिन वो डिफरेंटली देखेगी कि किस आदमी को क्या किया, उसकी क्या सजा हो सकती है, कितनी रूथलेस आप उसको सजा दे सकते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि गुड ट्रीवियल होता चला जाता है राइट की डिस्कोर्स के अंदर, गुड ट्रीवियलाइज होता चला जाता है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि तमाम तसव्वुरात खैर बराबर हैसियत रखते हैं तो दरअसल मैं ये कहता हूं कि गुड इन इटसेल्फ कुछ नहीं होता, जब मैं गुड के बारे में न्यूट्रल हो जाता हूं तो उसका नतीजा क्या होता है, गुड कोई माशरती जोर या माशरती हैसियत रखता ही नहीं, आप तो इससे बहस ही नहीं कि इस इंसान का अपने बच्चों के साथ क्या रवैया, इस इंसान का अपनी बीवी के साथ क्या रवैया। एक आदमी है जो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के दरवाजे में रख के ऐसे ऐसे मारता है, बदमाश हो बी को मारना अलग है, बी का हाथ दरवाजे में रख के कितना खबीस आदमी है, लेकिन वो शायरी कर, मोहब्बत भरी शायरी कर, सब लोग उससे शायरी पे वाह 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 वाह, उसको कह रहे हैं हाथी में पाकिस्तान का खिताब दे, नहीं हाथी में पाकिस्तान आदमी है पाकिस्तान का खिताब, मैन ऑफ द सेंचुरी का खिताब दे, लेकिन उसके जो इलाका है, उसका जो मोहल्ला है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको जो इमीडिएट मोहल्ला है वो कह रहा है ये आदमी अपनी बीवी से जुल्म करता है, बीवी को मारता है, बीवी से मोहब्बत नहीं करता, दूसरी औरतों को अपने घर में लेके आता है, बदमाश आदमी है। माशरा उसको उसके प्रोफेशन या उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर नहीं परख रहा, वो कह रहा है कि ये इसके ताल्लुकात क्या है, माशरती ताल्लुकात क्या है, अगर माशरती ताल्लुकात मेरे ठीक नहीं है तो मेरा खानदान मेरी कभी इज्जत नहीं करेगा, अगर मैं अपने बाप से बदतमीजी करता हूँ, मैं अपने बाप का एहतराम नहीं करता, मैं अपने भाइयों की बात नहीं मानता, उनकी बेइज्जतियां करता हूँ, उनका माल खा गया हूँ, अपनी बहन से मोहब्बत नहीं करता, अपने बीवी बच्चों का कोई ख्याल, तो मेरा खानदान में मेरी इज्जत मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या इसकी बुनियाद पर मेरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मार खाती है, मेरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कैसे क्या है, कभी मुझे कोई लेक्चर देने के लिए बुलाता है कि भाई आप में बात का इज्जत करते हैं, तो तुमने देखा है कि जब मार्केट ड्रिवन सोसाइटीज डेवलप होती हैं तो माशरती जिंदगी इररेलेवेंट हो जाती है, माशरती ताल्लुकात इररेलेवेंट होते चले जाते हैं, क्यों, इसलिए कि वो रेलेवेंट ही नहीं होते, खैर का इजहार आप माशरे में करते हो ना भाई, माशा तो इररेलेवेंट हो गया ना, असल चीज तो मार्केट रह गई, मार्केट के अंदर खैर तुम किस चीज को खैर समझते हो तो इररेलेवेंट है ना, तुम किसी भी चीज को खैर समझते हो, मैं जब किसी दुकान के ऊपर जाता हूँ तो मुझे मैं इससे ख्याल करता हूँ कि ये नेक आदमी है या शरीफ आदमी है या अच्छा आदमी है, अपनी बीवी का ख्याल करता है, मतलब दुकान पे मैं जाता हूँ तो सेलिंग एंड बाइंग की रैशनैलिटी होती है ना, सेलिंग बाइंग रैशनैलिटी में तो मैं अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि यार ये प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आदमी है, इससे इससे इसकी बुनियाद पर मैं इससे करेक्ट चेंज मुझे मिलेगा, लिहाजा ये तो आप देखें कि घर मार्केट बन जाता है, जब गुड ट्रिवियल होता है, राइट एक्सपेंड होते हैं तो माशा लीगल प्लेन पे चलता है और मॉरल प्लेन श्रिंक होना शुरू हो जाता है और वो ट्रिवियल हो जाता है, यानी कि आप अपनी पसंद इंफिरादी जिंदगी किस चीज को खैर समझते हैं, जिस चीज को भी खैर समझते हैं, माशरती अमल में वो इररेलेवेंट है कि आप किस चीज को खैर समझते हैं, माशरती अमल तो मार्केट की बुनियाद पर डिटर्मिन होता है, तो आप देखेंगे कि लिबर्टेरियनिज्म के अंदर मार्केट सुपरसीड करती है सोसाइटी, यानी कि मार्केट सेकेंडरी नहीं रहती, प्राइमरी हो जाती है, प्रायोरिटाइज करती है सोसाइटी को, और सोशल रिलेशनशिप डिटरमिन होते हैं मार्केट रिलेशनशिप की बुनियाद पर, यानी कि मार्केट के अंदर जो ताल्लुकात का ताना बाना होता है वो माशरती अमल के ताल्लुकात के ताने बाने को रीमॉडल करता है, रीस्ट्रक्चर करता है, रीडिफाइन करता है, और उसमें गुड जो निकल कर आता है वो ये निकल के आता है इफेक्टिव डिमांड कंसर्निंग गुड विल बी डिटरमिन्ड बाय द वन हु हैव कैपिटल, ज्यादा इम्कानात अपने तसव्वुर खैर के इजहार के उस इंसान के पास आते चले जाते हैं जिसके पास सरमाया ज्यादा होता है, तो ऐसा नहीं होता कि सब तसव्वुरात खैर यकसा कदर की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं, नहीं, जिसके पास सरमाया ज्यादा होता है वो ज्यादा तसव्वुर खैर को, अगर फर्जिया तुम्हारे पास बहुत माल है, तुम एक तसव्वुर खैर रखते हो, अब तुम चाहते हो कि माशरे को इन्फ्लुएंस करो, तो तुम कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर लो, तो तुमने क्या किया, एक टीवी चैनल खरीद लिया, उसमें मुस्तकिल तुमने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम बनाए और उस कदर को मुख्तलिफ जराए से, बच्चों के प्रोग्राम के जरिए और बड़ों के प्रोग्राम के जरिए और मजहबी प्रोग्रामों के जरिए और यू नो मुख्तलिफ सियासी प्रोग्राम के जरिए उस कदर को जिसे तुम काबिल कदर समझते थे फैलाना शुरू कर दिया, तो तुम कह रहे हो ये राइट ऑफ फ्रीडम है, बराबर है, बराबर है, कोई भी आदमी जाके टीवी चैनल पर बैठ जाएगा, कोई भी, आप इंतजार करते हो अल्लाह ने कोई मेरे पास आ अल्लाह ने मेरे पास आया कोई इंतजार करते करते इंतकाल हो जाता है लोगों का, उनके पास कभी कोई नहीं आता, फिर वो दूसरे लोगों से कहते हैं कि मैं मुझे मेरे पास बहुत इल्म है, इनसे कहो कि मेरे पास आ जाए, बल्कि वो कहते हैं कि आपके पास तो आते हैं, आप मेरे पास भेज दें,
टीवी पे जाना है, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी टीवी पे जाऊँ, इसी ख्वाहिश के लिए मैं दुनिया में आया कि मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करूँ, आप खुदा के वास्ते बोले 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 तो फिर कोई आ। हमारे एक हमारा यहीं का स्टूडेंट था एरिया स्टडी फॉर यूरोप का, तुम लोगों का क्लास फेलो था, क्या नाम था, दाढ़ी वाला लड़का था, आज पे चला गया याद है
मोहम्मद,
वो आया मेरे पास, वो लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे तो उसने कहा कि किसी सीनियर प्रोफेसर का हमें 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से या 10 मुहर्रम के हवाले से एक वो लेना इंटरव्यू लेना, तो आप भेज दीजिएगा बता दीजिएगा किसी का सीनियर आ गया। तो मैंने उसको बता दिया तो वो खुद नहीं आया, उस जो जिनका वो प्रोग्राम था उसके रेफरेंस से आए थे, तो एक आ गई टीम वगैरह, तो मैंने उनको बताया कि भाई उनके पास चले आए, मैंने उनसे कह दिया जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं टीवी पर आऊँ रोजाना पर्दा हटा के देखते, सुबह हुई कोई आया आज भी कोई तो वो कमेंट में तुम्हारे ख्याल में कितनी देर के लिए हो, कितनी देर का था वो प्रोग्राम है,
30 सेकंड,
हाँ 80 सेकंड में आपको बताना है 10 मुहर्रम की अहमियत या 12 रबीउल अव्वल की अहमियत, दोनों में से मुझे एक दिन था कोई 12 रबीउल अव्वल 10 मुहर्रम 80 सेकंड में आपको बताना है जल्दी से सही, और वो अपना तैयार कर क्या आ गई और अपना अपने पुरमक ख्याल 80 सेकंड में सारे ख्याल कैसे, कई दिनों से इंतजार था कितनी देर में रिकॉर्ड हुआ होगा, 2.5 घंटे, ढाई घंटे तक करते रहे वो, क्योंकि बाद में हमारे जो स्टूडेंट था उसने बताया कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, वो लड़की जो डायरेक्ट कर रही थी ना वो ठीक है क्या होगा क्या नहीं, उसे कभी कुछ ज्यादा फिर लाइट चली 2.5 घंटे की कोशिशों के बाद लाइट चली और वो लोग उसी महरूमी में वो लोग चले गए और मुझे भी कंडेम किया हमारी जो जाने मुझे कंडेम किया तुमने मेरा इतना वक्त, मैंने कहा मैडम आपने ये तो सोचना चाहिए कि मैं खुद क्यों नहीं कर रहा ये काम, मैं इसे फजूल समझता हूँ ना, मैं क्यों बताऊँ किसी को क्या अहमियत है, जिसको अहमियत है जाए मालूम करे, मैं टीवी पे बैठ जाऊँ तैयार होकर, पहले उनका मेकअप किया उन्होंने, नहीं ये यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे ये नजर आ रहा है मेकअप इतनी जगह पर ज्यादा जो है ना सफेद हो गया तो एकदम हाथ करते हुए यूं ऑन ले आती है ना तो बार बार कटिंग क्यों यूं यूं ले, ओ आपके हाथ आ रहे हैं ये तो हाथ काले हो गए और चेहरा सफेद हो गया, ये कट करें फिर कट करें, फजूल समझता हूँ ना इसे, इसे मजा नहीं कर रहा। एक बहुत बड़े आलिम दीन भी थे उनका भी ये प्रोग्राम था, एक बार मैं भी हमारे एक दोस्त थे जब मैं बच्चा था तो उस पर मैं भी चला गया, तो हमने उसके लिए 22 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, अल्लाह का शुक्र कि वो ऑन एयर नहीं है फड्डा हो गया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई कुरान की तफसीर के ऊपर आप लोग बात करें वो, तो हम लोगों ने कहा ये तो हमारी जरूरत नहीं हो सकती है वो, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें कोई भी मौजू पे आप 3 आदमी गुफ्तगू करें और उसके बाद एक आलिम दीन उस पर कॉमेंट कर देगा, तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है ये ठीक है, तो हम भी चले गए 96 की बात होता। तो एक साहब जो बहुत बड़े आलिम हैं दीन उनका तारुफ भी करा था, तो उन्होंने कहा हाँ जो है हमारा वो पहले उन्होंने बताया इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, तो उसके बाद कहा चले भाई आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगु है वहाँ सूरी सन अरुजी सैयद जैदी और मौलाना फला साहब, भाई काटे एक मिनट मैं आपसे, भाई मैं मौलाना नहीं मेरा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर फला 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 फला, अच्छा बाद में कर अच्छा लंबा लंबा बताएगा सूरी और ये कारी फला साहब, ये वो इरेलेवेंट हो जाता है कारी कहूँ डॉक्टर कहूँ मौलाना कहूँ, ये कारी फला भैया मैं कारी थोड़ी हूँ, मैं कारी नहीं हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर फला, ये वो कई बार उन्होंने ये किया, इतनी बार किया कि वो है ना 5वीं बार जब उन्होंने किया जैसे उसने कहा ना खारी। तो शाहनवाज फारसी ने कहा आपने फिर खारी कह दिया। उसके बाद शाहनवाज फारसी को पढ़ना पड़ा, बोलना पड़ा, क्योंकि उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो मैं बता ये रहा हूँ कि आप वो क्यों नहीं ऑन एयर। उन्होंने कहा इसके ऊपर तो बिल्कुल इश्तेहार नहीं है, तो बड़े बदमाश लोग हैं। तो वो कहता है मार्केट को तबाह कर दो पूरे के पूरे, तीनों बड़े बदमाश हैं, ये तो बिल्कुल नहीं चल सकता प्रोग्राम। ये तो प्रोग्राम है तो हमारा चैनल ही बंद करवा देंगे तीनों बदमाश। उनको मौलाना साहब पे एतराज नहीं था, हम तीनों पे एतराज होंगे। इतने तीन खबीस आपने एक साथ एक ही छक्के से जमा कर जो प्रोग्राम को फाइनल कर रहा था उसने कहा इनको बता दो कोई पैसा भी नहीं मिलेगा और ये तो बड़े खतरनाक है, बस खाना खा के चले जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने हमने खूब खाना खाया और जो हमने बातें की उसके बाद उन्होंने कहा ये तो चैनल बंद करवाएंगे, हमारे ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट हो जाएंगे, वायलेशन हो जाएगी, ये तो बिल्कुल नहीं चल सकता। इसका मतलब दूसरा क्या कि मार्केट हर आइडिया को फ्लोट नहीं होने देगी, हर आइडिया फ्लोट नहीं होगा, वो आइडिया फ्लोट होगा जो मार्केट फ्रेंडली होगा। और अगर वो मार्केट फ्रेंडली नहीं है, देखो पाकिस्तानी सिस्टम इतना मैच्योर नहीं है इसलिए उन्होंने वो नहीं चलने दिया, अगर अमेरिका वगैरह होता फौरन चला देते। क्यों? क्योंकि वो मार्केट इतनी सोफिस्टिकेट हो गई है, अपने खिलाफ आने वाली चीजों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती है, यू नो। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट इतनी मैच्योर नहीं है, पाकिस्तानी मार्केट इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इस तरह इतनी सोफिस्टिकेट नहीं है अभी, तो वो फौरन जो है वो हुड़क जाते हैं और कहते हैं भाई ये तो हमारा चैनल ही ना बंद करवा दे और ये वो, और लोग नाराज हो जाएंगे, लोग हमारा ये तो बदमाश तीनों ही कह रहे हैं कि चैनल देखना ही नहीं चाहिए। चैनल के ऊपर ही प्रोग्राम हो रहा है, कुर्सी पे कह रहे हैं ये जो सब कुछ ये कर रहे हैं ये सब फजूल एक्टिविटी है, नतीजे में सिवाय जहालत या कुछ प्रिपेयर नहीं होता। सुनिए तो सेल्फ डिफीटिंग है, सुनने का ये तो कह रहे हैं कि ये करना ही नहीं चाहिए, तो फिर ये प्रोग्राम ऑन एयर कैसे जाए। सुनने का हाँ वाकई ऑन एयर कैसे जाएगी, तो अगर फिर ये प्रोग्राम नहीं हम ऑन एयर करते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि पैसा जिसके पास होगा, इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमिन्ड बाय द वन हु हैज कैपिटल। लिहाजा आप देखेंगे लिबर्टेरियन सोसाइटी में वो मार्केट ड्रिवन सोसाइटी होती है, सोसाइटी ड्रिवन होती ही नहीं। और मार्केट के अंदर ना तो कोई अमीर होता है, वो काला होता है, ना गोरा होता है, ना औरत होता है, ना मर्द होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना बैरिया होता है। मार्केट के अंदर उसका सिक्का चलता है जिसके पास माल हो, ठीक है ना। अगर आपके पास माल है आ जाए मैदान में, और अगर आपने मार्केट फ्रेंडली पोजीशन लिए बगैर पैसा खर्च किया तो पैसा डूब जाएगा आपका। तो मार्केट के अंदर वो सर्वाइव नहीं, हर आदमी सर्वाइव नहीं करेगा, यानी कि मार्केट में सिर्फ पैसा लेके आने से सर्वाइव नहीं होगा। मार्केट रैशनल से कंसिस्टेंट होना चाहिए तुम, अगर नहीं हो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, बिकेगा ही नहीं वो, क्योंकि तुम रैशनल ऑफ द मार्केट से ही हार्मोनाइज नहीं हुए तो फिर तुम्हारी चीज क्या करे। तो लोग जो ये समझते हैं कि मार्केट के अंदर मैं मेहनत करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, मेहनत करने में कामयाब नहीं होता। मेहनत आपकी हार्मोनाइज होनी चाहिए विद द रैशनल ऑफ द मार्केट। गुलिस्तान जौहर में अगर तुम जाओ यहां से समामा से उस तरफ, तो तुमने सीधे हाथ पे देखो कि बहुत बड़ा कैलटेक्स का पेट्रोल पंप था। पाकिस्तान के अंदर जो सक्सेसफुल बिजनेस है ना, जिसमें प्रॉफिट रेट जो है 30% है, 30% प्रॉफिट रेट है, और लगाते ही शुरू हो जाता है प्रॉफिट 30% है, यानी कि तुम 100 रुपए लगाओगे ना 130 रुपए कमाओगे, और ये कोई दिनों में नहीं उसी वक्त खराब काम है ये लोग। और उसमें कोई बेमानी अगर तुम नहीं करो, अगर तुम बेमानी करो तो 55-60 तक भी जा सकते हो बेमानी, अगर तुम बिल्कुल जो गिवन ऑनेस्टी के मेहारात हैं उस पर पूरे रहो तो तुम कोई पैसा तुम्हारा खत्म। और अगर तुम्हारा कोई पेट्रोल पंप जला दे, जल जाए तुम्हारा पेट्रोल पंप, तो भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता, वो इंश्योर्ड होता है। और ये जो मैं 30% में बता रहा हूँ ना, वो इंश्योरेंस के पर मंथ जो तुम्हारा बनता है वो देने के बाद, सारे खर्चे निकालने के बाद बता रहे, वो खत्म हो गया, उसकी जगह क्या बन रहा होगा तुम्हारे ख्याल में?
क्या बन रहा होगा?
प्लाजा,
प्लाजा नहीं बन रहा, हॉस्पिटल बन रहा, उस जमीन को हॉस्पिटल बन रहा, नॉर्थ पता नहीं क्या सफारी व्यू हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वो फीस अभी नहीं बना रहे हैं हमारे लोगों की खिदमत करने के लिए, इलाज करने के लिए। सोचो ना कि कोई जो कैलकुलेशन कितनी महंगी होगी, वो जमीन करोड़ों रुपए की जमीन होगी, वो उसके ऊपर करोड़ों रुपए का यानी क्या पेट्रोल पंप बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा थोड़ी होता है एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल। उसमें तो इक्विपमेंट होगा, ये होगा, वो होगा, सर्जरी, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा होगा कि वो उसमें चला गया। तो अगर तुम हॉस्पिटल खोलो और तुम धंधा ना करो तो तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। पेट्रोल पंप से ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है, मुनाफा बख्श कारोबार जिसमें इंसानों खाल खींच के तुम माल बना रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? हुआ इंसानी तारीख में कभी ऐसा हुआ कि किसी ने अरबों रुपए के बनाए हों हॉस्पिटल माल बनाने के लिए? तुम्हारे ख्याल में वो फी सभी दिल्ला बना रहे होंगे? ये तब्बा जिन लोगों ने बनाया था, ये बड़ा बिजनेसमैन था वो, तो उसने कहा कि इसमें जो गरीब आदमी होगा उसका मुफ्त इलाज होगा, एक पैसा भी नहीं लूंगा, एक पैसा नहीं, ठीक है, बिजनेसमैन था। और माँ बीमार होके मरी थी, उस वक्त इतना माल नहीं था इनके पास, तो उसने कहा कि मैं एक अपनी जिंदगी में हॉस्पिटल बनाऊंगा, बेहतरीन उसने हॉस्पिटल बनाया। उसने कहा कि जो आदमी गरीब होगा उसका मुफ्त इलाज होगा, और जो दे सकते हैं उनकी मर्जी के ऊपर होगा कि वो जितना देना चाहें, और जो अमीर आदमी होंगे उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डोनेट करें। ये उसने रूल्स बनाए। जिस दिन उसका इनॉग्रेट, उसने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा अमरीका कि वो मेडिसिन में डिग्री करके आ जाए, और वो मेडिसिन में डिग्री करके आ गई। जिस दिन उसका इफ्तिताह होना उस दिन इंतकाल हो गया बाप का, उसी दिन इंतकाल हो गया। बाप के इंतकाल के बाद बेटी ने कहा वो एक खैराती अस्पताल में जो माल लेके आएगा वो पढ़ इलाज होगा, जो माल नहीं लेगा भाग जाएगी। आगा खान के बराबर है उसके रेट है, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल, इलाज वगैरह स्टेबिलिटी वगैरह उसकी है, उसकी रिकग्निशन भी है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, हैवीली पेड है। लेकिन उस बाप ने जो उसके लिए पूरा बजट बनाया था, बेटी ने उसको तिगना चौगुना बढ़ा दिया, प्रॉफिट में वो जा रहा है। एक हमारे दोस्त के वालिद थे, वो बीमार हो गया, उनको लेके गए तब्बा, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये तो डेथ हो चुकी थी उनकी, जो दूसरे डॉक्टर्स ने बताया डेथ हो चुकी थी उनकी, उन्होंने कहा ये तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी फौरन, 3 लाख रुपए ले, रात के 3 बजे। किस लिए बना था वो हॉस्पिटल? इसलिए बना था मुफ्त इलाज होगा। वो कह रहा है मैं पैसे दूंगा, और 3 बजे कहां से ले आऊं, अभी हार्ट अटैक हुआ है, फौरन लेके आया हूं हॉस्पिटल। वो कह रहा है 3 लाख रुपए जब तक नहीं करेंगे तब तक हम वेंटिलेटर पे लगाएंगे, वेंटिलेटर लगा। 3 लाख रुपए जमा करना रात के 3 बजे, मजाक है? एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, वो बेचारा जो उधर भागा वगैरह, उसने अपने दोस्त को फोन किया, वो अच्छा बिजनेसमैन है, वो आया, लेकिन क्या 3 लाख रुपए जी घर में लेके बैठेगा रात को 3 बजे? तो उसको क्या कह रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर? एटीएम कार्ड होगा ना निकाल के ले, कैश लेके आओ कैश। वो कह रहा है मैं चेक लिख रहा हूँ, चेक तो बाउंस हो जाता है। बोला भाई मैं, ये मेरा बिजनेस है, कोई फकीर नहीं हूँ। क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2 लाख रुपए उसने चार्ज किए, तब कहीं जाके एंजियोप्लास्टी हुई 3 घंटे बाद। और जो दूसरे डॉक्टर जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा डेथ हो चुकी थी, उसके बावजूद एंजियोप्लास्टी करके 3 लाख रुपए बना लिए और 5-6 दिन वेंटिलेटर पर रखे रुख्सत कर दिए। कितने पैसे? 3 लाख रुपए एंजियोप्लास्टी पे ले लिए, जितने तो ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती है 1.5 लाख के ऊपर। तो उन्होंने तकरीबन 3 लाख 80 हजार का लोन बनाया और बॉडी रोक ली, जब तक 80 हजार रुपये नहीं दिए बॉडी नहीं थी, बॉडी ले गया। ये کون سی اخلاقیات ہے جس نے تمہیں مجبور کیا کہ اسے ایک اخلاقی عمل کے طور پر قبول کرو؟ تمہارے باپ کی باڈی روکی ہوئی ہے، تمہارے ہی معاشرے کے اندر ایک آدمی نے، ایک ادارے نے، وہ کہہ رہا نہیں ہم باڈی نہیں دیں گے دفنانے کے لیے، پہلے مال لے کے آؤ مال. اور لوگ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، پہلے جا کے پیسے لے جائے. اور پھر وہ پیسے لے کے آیا، کس نے تمہیں ٹرین کیا، ڈسپلن کیا اس چیز کے لیے کہ تم اس خباثت کو برداشت کرو؟ کس چیز نے برداشت کرا؟ تمہارے پورے ایجوکیشن سسٹم نے، تمہارے مارکیٹ پروسیس نے، تمہارے معاشرتی تعلقات نے نہیں، بلکہ تمہارے مارکیٹ ریلیشن شپ نے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل فی نفسی جتنا بھی ناقابل برداشت ہو، آپ اسے برداشت کرتے ہو، اس جبر کو قبول کرتے ہو، کس بنیاد پہ؟ تو بڑی غلط بات ہے کہ آپ ہسپتال والوں کے بیچاروں کے پیسے نہ دیں، تو بڑی گندی بات ہے. وہ ایک مردے کے اوپر جو پیسہ بنا رہا ہے وہ گندی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ میرے بیٹا گر گیا، اس کے چوٹ لگی یہاں پر، ادھر بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو، میں نے اس کو پکڑ کے، وہاں درجہ ہے نا گردن کا معاملہ، میں اس کو لے کے گیا ابن سینا ہاسپٹل. ابن سینا میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، تو میں یہ چاہوں گا نا کہ وہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو فوراً اس کو کیئر کرے، گردن کا معاملہ. بات کر لیا. بھیا آپ دیکھ کیوں نہیں رہے اس کو؟ بولنے جائے پہلے پرچی کٹا کے میں. تو مجھے آیا غصہ اس وقت، میرے بچے بھی لگی تھی چوٹ، تو میں، وہ بیچارہ کمپاؤنڈر تھا نا، اس میں انسانیت، اس نے کہا کہ میں نے اس کو لگایا تھا پائروڈین، لگایا گھر میں لگاتے ہی جب، تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس سے خون رک گیا، آئیے آپ میرے ساتھ آئیے. پرچی کتنے کی پرچی؟ 200 روپے کی پرچی تھی، صرف 200 روپے کی پرچی تھی. ایک بچہ ہے جس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی شرٹ میں خون ہے، باپ کے ہاتھوں میں خون ہے، شرٹ پہ خون ہے، باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، یہاں پہ جیب میں موبائل بھی پڑا ہوا ہے، کہ کوئی فقیر بھی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے تیرے 200 روپے کی پرچی نہیں کاٹو تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو میں نے کہا یار کوئی خطرے کی بات نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل کوئی خطرے کی بات نہیں، بالکل کچھ نہیں، اس کی کھال پھٹی ہے، جو آپ کو اندر لگ رہا ہے نا کہ سوراخ ہو، سوراخ نہیں ہوا. وہ سینئر کمپاؤنڈر تھا، اس نے بہت کیے ہوں گے اس طرح کے، بولیں گے اس کو ٹانکا لگانے کی ضرورت ہے. تو جب مجھے اطمینان ہو گیا، پھر میں نے اپنی جانور جو تھا وہ نکل گیا، میں نے کہا میں اس کو ماروں گا. میں نے کہا اس کو لے کے جاؤ بیٹھو. اس نے کہا آپ چھوڑیں بدماش آدمی کو، آپ جا کے بس اس کو پائروڈین آپ نے لگا دیا، بالکل آپ نے ٹھیک کیا، اس کا زخم آپ کھلا رکھیں اور آپ لے جائیں اس کو، یہ بلا ویسے پیسے بنائیں گے کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا تم ذرا اس کو گاڑی میں لے جا کے بیٹھو، میں اس کو ٹھیک کروں گا. تو سارے جب میں نے اس کو چیخا، سارے لوگ مجھے کنٹین کر، سارے لوگ جو بیٹھے تھے شرفا سب مجھے کنڈیم کر. میں نے ان سب پہ، میں نے کہا تم سب باہر میں جاؤ، تم سب پہ لا، اور یہ کہہ کے میں آ گیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ کہنے یہ تو بالکل جائز ہے، وہ بڑی نہیں. مجھے کہنا جائز بات ہے کہ آپ پرچی تو کٹوائیں، یہ بیچارے کہاں سے دیں گے 200 روپے؟ میں نے کہا بھائی میں بھاگ رہا تھا کیا؟ وہ ماننے پہ تیار نہیں، وہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ وہ مجھے کہتا اچھا میں دیکھ رہا ہوں آپ جا کے پرچی کٹ رہا ہوں. وہ بیٹھا ہوا ہے کیوں کر کے، بچہ وہاں کھڑا ہوا ہے، ماں اس کی کھڑی ہوئی ہے، میرے ہاتھوں میں خون ہے، بچے کی یہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے بات کر رہا ہے ایک آدمی سے جیسے کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا. اور وہ سب لوگ مجھے سمجھا رہے ہیں، یہاں لوگ آ جاتے ہیں علاج کروا لیتے ہیں پیسے نہیں دیتے، یہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ یہ اخلاقیات ہیں بھائی، کس کی؟ دا موریلٹی آف دا مارکیٹ. اف یو ڈونٹ ہیو کیپیٹل، اف یو ڈونٹ ہیو بگز ان یور پاکٹ، گو گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ایک اخلاقیات ہے. कि बर्दाश्त करो। मार्केट की इस जबर को कबूल करो, लेकिन इसे जबर के तौर पे कोई नहीं पेश करता। ये जबर नहीं है कि तुम एक आदमी का बाप मर रहा है उसे तुम कह रहे हो पहले पैसे लेके आओ वरना मैं नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा सारे डॉक्टर ऐसे करते हैं, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे जो कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर जैसे पेशे में आने के बावजूद आदमी बिकॉज ऑफ द मार्केट प्रेशर तब्दील हो जाता है, जबर इख्तियार कर लेता है मार्केट का, डॉक्टर जैसे पेशे के अंदर जिसमें उसको रोजाना इंसान। अभी वो हमारी दोस्त है जो डॉक्टर है खान के अंदर, तो वो बच्चा मर गया, बच्चे के वो दिल को वो प्रेस कर रही थी, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट है वो, उसके घर वाले रो रहे हैं। एक आ गई डॉक्टर कह रही है मुझे रिलीज करने मेरी वो हो गई, मेरे टाइमिंग खत्म हो गई, छुट्टी छुट्टी का वक्त हो गया, वो प्रेस कर रही है उसका दिल और वो कह रही है मुझे रिलीज करने उससे साइन कर दूं, खड़ी हुई है वो। और एक सीनियर डॉक्टर कह रहे मेरा नाम भी यहाँ पर लिख लो कि मैं यहाँ पर मौजूद, कुछ नहीं कर रहा वो खड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि अगर एक कंसल्टेंट मौजूद हो तो उसको पैसे मिल जाते हैं पर केस, हालांकि वो कुछ नहीं कर रहा, वो ऐसे ही आ गया था वहां पर जाते जाते, तो उसने कहा मेरा भी लिख लो उसमें नाम, वो प्रेस कर रही थी उसको, हम लोग उसको लेके आए, मेरा दोस्त की बीवी है वो, तो वो रोती भी गई है सर कि इंसान के बच्चे कौन है ये, एक इंसान इनका बच्चा मर गया है तो गले में वो फंस गई थी छालिया, तो वो बच्चा मर गया उसकी निकाल ली उन्होंने, लेकिन उस वक्त तक उसकी वो बंद हो गई थी, उन्होंने सक कर लिया उसको छालिया को और उसको प्रेस करके बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं बचा, बच्चा मर गया, देर हो गई उसमें। तो वो बच्चे की मौत उसके साथ, वो एक कह रही है मुझे जाना है मुझे रिलीव करो, और ये कह रहा है मेरा नाम लिख लो इसके अंदर कि मैं भी यहाँ पर कंसल्टेंसी में मौजूद था। ये कैसे हुआ इंसान के साथ, कैसे हो गया वो ऐसा, ऐसा कैसे बन गया वो, ऐसा ऐसे बन गया कि वो डिसिप्लिन इख्तियार किया उसने कैपिटल का। तो जो तुम कह रहे हो ना कि डिसिप्लिन, तो तुम्हें इख्तियार करना पड़ेगा किसी भी मॉरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तुम्हें एक डिसिप्लिन इख्तियार करना पड़ता है, डिसिप्लिन ऑफ केयर इख्तियार करते हो, और ये मॉरल होता है, ये मॉरल है कि अगर मैं पैसा खर्च करूंगा तो फिर मुझे तो सर्विस चाहिए, सही है, और अगर मैं पैसा तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं सर्विस खराब कर दूंगा। और वो कहते हैं कि एंग्लर एक आदमी था जो कहता था उसकी थेरेपी का मैकेनिज्म था, उसे हम कहते हैं क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, तो वो कहता है कि जब कोई तुम्हारे नफ्सियाती मरीज कोई आए तो उसे तुम पेशेंट के पेशेंट मत कहो बल्कि उसे क्लाइंट कहो। ये बेचारे ने उसने कहा था, एडलर के बाप को भी नहीं पता था कि क्लाइंट का ये बदमाश ये मतलब निकालेंगे, तो वो क्लाइंट इसलिए कहता था कि वो तुम्हारे पास आया है अपने मसले के लिए, उसे पागल जब तुम स्टिग्मेटाइज कर देते हो तो उसकी ठीक होने के इम्कान कम हो जाते हैं, इसलिए वो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच इख्तियार करता था, क्लाइंट का लफ्ज इस्तेमाल करता था नफ्सियाती मरीजों के लिए। अभी आप मैनेजमेंट साइंसेज में चले जाए, वो कहते हैं कि जो भी आपकी कंपनी में आता है वो आपका क्लाइंट होता है, हॉस्पिटल में आता है ही इज नॉट पेशेंट ही इज क्लाइंट। वो भाई एडलर ने इसलिए थोड़ी कहा था, एडलर का ये मतलब नहीं था। अब वो कहते हैं नो, द पेशेंट इज योर क्लाइंट। तो जो क्लाइंट मार्केट के अंदर जो मीनिंग थी वो इम्पोज कर दी एडलर के लव्स के साथ। अब क्लाइंट को तो तुम्हें उल्लू बनाना है, अगर फर्ज किया कि तुम्हारा ऑपरेशन के बगैर तुम ठीक हो सकते हो दवाओं, लेकिन ये कि तुम अगर ऑपरेट कर दो तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो तुम उसको ऑपरेट अगर तुमने नहीं किया तो अस्पताल को तुमने नुकसान पहुंचा दिया। क्यों? तो एक क्लाइंट आया था जो पोटेंशियल पैसा भी लेके आ सकता था, तुमने उसको कहा नहीं मैं दवा लिख के दे रहा हूँ बस ये दवा खा ले, ठीक है ऑपरेट क्यों करवा, ऑपरेट क्यों करवा। तो ये जो बाद हॉस्पिटल जैसे ये शिफा के अंदर बहुत सारे जो फौज के डॉक्टर हैं उनको आमतौर पर लोग कहते हैं डंगर डॉक्टर, उनके बारे में मशहूर किया होता है डंगर डॉक्टर कि वो सख्ती से पेश आते हैं, गुस्सा करते हैं, डांट के भगा देते हैं, लेकिन एक और काम भी तो करते हैं वो पैसे वैसे नहीं बनाते, वो ह्यूमन बॉडी पे जितना स्ट्रेस डालना चाहिए ना वो डालते हैं। वो कहते हैं भाई इसके लिए कोई नहीं रिलीफ, आप पेन बर्दाश्त करें, इसीलिए उनको डंगर डॉक्टर है। वो कहते हैं इसके लिए आप ना दवाएं खाएं, इसके नतीजे में आपकी किडनीज पे असर पड़ेगा, आप क्यों पेन किलर खा रहे हैं, पांच छह दिन पेन में रहे क्या फर्क पड़ता है, नहीं खाए पेन किलर, वो नहीं देते पेन किलर, तो उनके पास लोग घर के मारे नहीं जाते। लेकिन अगर फर्ज किया कि तुम एक पेन किलर की कंपनी है, वो तुम्हें कह रही है कि आपको बूटगन पर ट्रिप मिलेगा तो तुम धड़ाधड़ लिखोगे ना, इससे क्या पता था उसकी किडनी फेल हो जाती है क्या हो जाती है। वो कह रहा था डॉक्टर के ये बहुत सारे लोग पेन को रिलीव करने के लिए धड़ाधड़ पेन किलर खाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करता, इसीलिए कि अगर वो यंग एज से खाना शुरू करते तो 40 के बाद किडनी फेलियर के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं, 40 ईयर्स के बाद अगर कोई आदमी बचपन से खा। इम्यून एक तो होता है वो उस मेडिसिन की वजह से, दूसरा उसकी किडनीज अफेक्ट होती है, पैंक्रियाज अफेक्ट हो जाता है, पैंक्रियाज पेन किलर से डायरेक्टली अफेक्ट होता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, शुगर हो जाती है लोगों को। देखा बड़े ऑपरेशंस के बाद तबील अर्से तक अगर तुम पेन किलर पे हो तुम्हारी शुगर हो जाती है, क्यों हो जाती है, इसलिए पैंक्रियाज डैमेज कर देता है, ये पता है डॉक्टर्स को, नहीं देते वो, जो सीनियर डॉक्टर है ना जो अल्लाह से डरते हैं ये नहीं देते, और उनके पास कोई आ जाता है ये देखा भगा देते हैं फौरन। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं भाई मुझे बूटबन जाना है, लोगों की किडनी होंगी तो वो जाने, उनका काम जाने, मुझे क्या। तो मैं ये बता रहा हूँ कि डॉक्टर वकील टीचर ये सब जो आइडेंटिटीज हैं मार्केट आइडेंटिटीज है, और इन सबके मफादात वाबस्ता होते हैं इस पूरे के पूरे निजाम के साथ, इसीलिए वो ये जबर कबूल करते हैं। लेकिन अब और उनसे कहेंगे मजहब का जबर, उससे माल तो बन नहीं रहा, मजहब का जबर क्यों अख्तियार करो, उससे क्या मेरा माल बन रहा है, माल जा रहा है उसमें तो, लेकिन मार्केट का जबर अख्तियार करने नजर मुझे तो बड़ा माल मिल रहा है तो ठीक है जबर मैं अख्तियार करूंगा। तो बताने का मतलब ये कि जबर की नौयत बदलती है, जबर का इजहार बदलता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप गुड की ट्रिवियलिटी को रिपील करते हैं इन फेवर ऑफ दी सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट। ठीक है खाली वैसे नहीं बोलते हैं
सवाल वगैरह,
मैं ये जो हैंड आउट है क्योंकि मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो है तो मैंने लिबर्टेरियन मैनिफेस्टो भी निकाल दिया, तो ऐसी जहन में आया था लिबरलिज्म के भी जो मैनिफेस्टो हुआ वो चंपूगिरी के मार्क्स फतेह का आदमी नहीं है इसलिए उसको जानते भी नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन ये कि बहुत अच्छा उसने लिखा, वेरी गुड वेरी वेल रिटन, जो बिल्कुल लिबरल पोजीशन आपके सामने दो और वो चार की तरह रख देते हैं। हमेशा मजहबी मार्गों में गुड को क्वेश्चन किया जाता है और गुड के मुकाबले एक दूसरा गुड लाया जाता है, मतलब ये क्रिश्चियन ने जुदाई गुड को रिपील नहीं किया, उसने कहा जुदाई गुड जो है उसमें ये कमी है, नहीं हजरत ईसा तशरीफ लाए तो उनको कहा जाता था जीसस मींस द प्रीचर ऑफ जुदाइज्म, अगर आप वेबस्टर की डिक्शनरी देखो तो जीसस मींस द प्रीचर ऑफ जुदाइज्म, तो शुरू में लोग यही समझे कि ही जीव, लेकिन जब उन्होंने कहा देखो अब यहां तक तो है लेकिन अब आगे भी बढ़ना है, दुश्मन हो गए लोग, तो वो एक खैर के मुकाबले पर खैर लेकर आता है, कहता ये खैर है, खैर के मुकाबले पर खैर, तो मजहबी माशों में खैर की जंग होती है, लिहाजा उसके नतीजे में आप उसको कंडेम करते हो, आपको बजाहिर क्रिटिसाइज करना आसान लग जाता है ना कि ओ हो जो हमारा खैर तो मान लेगा ये इसे खैर कर रहा है तो हमारी इंसल्ट कर रहा है, ये क्या हो गया मॉरल कैनिबलिज्म आ गया, क्योंकि मेरे तस्वुर खैर को ये खैर नहीं मान रहा, मेरे तस्वुर खैर को खा जाना चाहता है, जिस तरह मुझे खा जाना चाहता है, मेरी बीन को खा जाना चाहता है, तो मॉरल कैनिबलिज्म आपको दिखाई देता है। लेकिन लिबरल माशरे के अंदर कहते हैं आप भी अपने खैर का खाएंगे और भी हम सब अपने अपने खैरों का खाएंगे, तो आप कहते हैं इसका मतलब है मैं आजाद हूँ अपने तस्वुर खैर के इद्दिया में और उसके इजहार में, तो ये मॉरल कैनिबलिज्म नहीं, यही असल में अदल है। लेकिन क्या हर तस्वुर खैर पनप सकता है या नहीं, तो वो तो बाय वर्च्यू ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द मार्केट पनपता है या नहीं पनपता, तो वो तो वाजे तौर पर आप दिखाई नहीं सकते क्योंकि खैर के मुकाबले पर खैर तो लाता ही नहीं, वो खैर के मुकाबले पर क्या लेके आता है हक, तो आप कहते हैं इस हक से तो मैं अपने खैर को भी तो दिफा करूंगा तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो उसके नतीजे में कोई भी खैर बाकी नहीं रहता।
सर लेकिन क्या हम इस हक को ही क्वेश्चन नहीं कर सकते,
मुझे तो कोई नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं देता कि कोई भी हक को, हुकूक को तो क्वेश्चन नहीं कर रहा कोई भी। हम तो यही कहते हैं कि हुकूक को क्वेश्चन करो। ये तुम्हें किसने राइट दे दिया? जब प्रोटेस्टेंट्स ने कैथोलिक से कहा एवरी वन हैज इक्वल राइट टू इंटरप्रेट बाइबल, तो कैथोलिक से मार मार के भुरकस निकाल दिया प्रोटेस्टेंट्स। उन्होंने कहा तुम कौन हो तो इंटरप्रेट करने वाले बाइबल को? एवरी वन इज नॉट इक्वल टू इंटरप्रेट बाइबल, एवरी वन इज नॉट इक्वली बीन अलाउड टू इंटरप्रेट बाइबल, द चर्च विल इंटरप्रेट द बाइबल। तो लड़ाई हुई ना कितने दिन, 400 साल, 400 ईयर्स ऑफ वॉर। ऐसे ठंडे पेटो बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने। एवरीबडी हैज एन इक्वल राइट टू इंटरप्रेट बाइबल, 400 ईयर्स ऑफ वॉर चली है इसके नतीजे। तो ऑस्ट्रिया में और यानी कि बवेरिया में और प्रशिया में, हैनओवर में जर्मन्स ने तो बड़ा बुरा मारा एक दूसरे को। तो बताने का मतलब ये वो कहते थे कि भाई मैं तुम्हारा ये कैसे हक तस्लीम करूं कि, लेकिन मैंने आपको बताया ना रिलीजन के अंदर हुकूक की बुनियाद पे बहस नहीं होती, खैर की। वो कहते हैं इट्स नॉट गुड। एक आदमी जब पूरी जिंदगी लगाई हो मजहब के ऊपर, वो और एक आदमी शराबी कबाब में, दोनों बराबर की तफसीर करेंगे और दोनों की तफासीर का की हैसियत भी बराबर होगी, तो नहीं हो सकता। तो राइट को अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े हर चीज को वो हुकूक के ही दायरे के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं, एज द राइट्स आर न्यूट्रल, राइट्स आर नेवर बी न्यूट्रल।
लेकिन इसको जो मतलब बेतराज है, मतलब ऑर्डनिस्टों का जो मतलब वो एक कहते हैं मतलब इश्तिहार की बहस में खास तौर पर जो मतलब जो आपने कहा कि एक आदमी जो है खराबी और सब आदमी है और एक आदमी ने पूरी जिंदगी गुजारी, वो ये कहते हैं कि मतलब इश्तिहार जो है या जो भी इंटरप्रिटेशन होती है वो तो मतलब अकली अकल की बुनियाद पर होती है, रैशनलिटी की फैकल्टी जो है वो काउंट करती है। अगर एक आदमी की जो है मतलब खराबी और सबाबी है लेकिन उसकी रैशनलिटी की फैकल्टी हायर है और सुपीरियर है, और एक आदमी रिलीजियस है बहुत हायर है सब कुछ है लेकिन उसकी जो है फैकल्टी ऑफ रैशनलिटी इंफीरियर है, तो आई शुड बी मतलब एक्सेप्ट द मतलब आर्गूमेंट ऑफ दैट इंफीरियर पर्सन।
देखिए पहली बात तो मजहब के अंदर एक आदमी नहीं होता ना, जनरल रेप्रेजेंट बेशुमार होते हैं और उसकी ट्रेडिशन होती है, उसकी तारीख होती है, वो हवाओं में तो नहीं खड़ी होती। तो आप इंफीरियर आदमी से क्यों ले रहे हो? जो सुपीरियर है वो सब देख लिए यार, जो सुपीरियर थे वो सब देख लिए। आप तुम्हें कोई नहीं मिला तो फिर तुम आ जाओ ना, लेकिन तुमने तो देखे ही नहीं, बगैर देखे ही आ गए। दूसरी बात ये कि रैशनलिस्ट तो ये कहते हैं एवरी वन इज इक्वली रैशनल। अगर तुम रैशनलिस्ट ही हो, मॉडर्निस्ट हो, वो कहता है फैकल्टी ऑफ रीजन तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कांट तो कहता है सबके पास कैटेगरीज ऑफ रीजन फिक्स है, तो तुम्हें नहीं लग रहा वो रैशनल। और तीसरी बात ये कि रिलीजियस डिस्कोर्स में हाल और मकाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इल्म मिलता है जिसका हाल ठीक हो। जैसे हमारे बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि एक आदमी इमाम जाफर सादिक के पास आया और उसने कहा कि मुझे जो है वो इसमें आजम बता दे। तो उसने कहा भाई इसमें आजम, इसमें आजम का तुम क्या करोगे? बोले कहा मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ और मुझे जो है इसमें आजम का इल्म जानना। इसमें आजम उस ट्रेडिशन के अंदर ये समझा जाता है कि जिसको मालूम हो वो हवाओं और पानियों और आग के ऊपर उसकी हुकूमत कायम हो जाती है, इनवेंसिबल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं है। उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आप इमाम है वक्त, आपको नहीं पता? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बड़ी दूर का सफर करके आया हूँ और मेरे में हिम्मत नहीं है। और आप बोले अगर तुम मुझे झूठा समझते हो तो फिर इसका मतलब है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं करूँ। फिर मैं क्या करूँ? मैंने कहा नहीं मुझे पता तो नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि किसे पता है। तुमने अच्छे तरह यही बता। मैंने कहा सुबह पहला आदमी शहर में दाखिल होगा उसको इसमें आजम पता है और उससे पूछोगे तो क्या बता भी देगा। तो मुझे यहीं जाके बैठ गया, पूरा दिन पूरी रात बैठा रहा, फिर दूसरे दिन भी पूरा दिन बैठा रहा, रात हो गई कोई नहीं। तो गुस्सा वापस आया, उसने कहा आपने कोई आदमी दाखिल ही नहीं हुआ शहर में? तो कोई आदमी दाखिल नहीं, कोई आदमी दाखिल ना, आपने मुझे धोखा दिया।
पूरा दिन दो दिन से मैं बैठा हूँ। उन्होंने कहा सोचो, बोला एक आदमी आया था बस, फटे कपड़े उसके थे, मिट्टी से बाल अटे हुए थे, तो उसने कहा वो अंदर आए तो अंदर नहीं आने दिया, तो उसने कहा अच्छा एक लोटा पानी दे दो, तो एक लोटा पानी उसको दिया, वहीं पे उसने वुजू करके चला गया। बोलने के भाई वो इसमें आजम जानता था, लेकिन तुमने इस आदमी तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा है किसको इसमें आजम उसे मिलेगा जो इस सतह का आदमी, कि उसके पास तमाम ताकतें हैं लेकिन एक चौकीदार से कह रहा भाग जाएगा क्या, तो भाग गया। उसने ये नहीं कहा अभी बताता हूँ तुम्हारे कुचल देता हूँ पूरे शहर को, आग लगा दो पूरे शहर को। वो इस सतह का आदमी होगा जिस सतह का होना चाहिए उसको मिलेगा वो, हर एक को थोड़ी मिल जाएगा, हर आदमी मिल जाएगा, हरे आदमी को मिल इसमें आजम है दुनिया दो मेरठ में तबाह कर देगा, शैतान को थोड़ी मिलेगा इसमें आजम। तो उसके लिए इंसान के पास रिलीजन के अंदर हाल और मकाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक आदमी के ऊपर वो बात आया ही नहीं होती, अगर उसकी वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग नहीं है, ग्रोथ नहीं है उसका, वो पहचान नहीं पाता, वो उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है, तो अब आप कहें कि ये कैसे होगा, बोला ये होगा उसका तरीका भी बताया लोगों ने, क्या तरीका इख्तियार करो, वो तरीका इख्तियार कर लो तो वो आ जाएगा। कोई ऐसी तोपे चलाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा गोरख धंधा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कैसे होगा कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है, कोई मैथमेटिक्स की थियरम नहीं। सबसे पहले खाना कम कर दे, जो सूर्या लगा दे, खाना सबसे पहली शर्त ये होती है खाना कम कर दे। हमारे जो मौलाना साहब थे उन लोगों तबलीग जमात से ले गए 3 दिन के लिए, हमें लारा लप्पा ही दिया कि बड़ा मजा आता है और घूम फिर भी देते हैं और ये होता है तफरी भी हो जाती है, और एक हमने कहा चलो आउटिंग भी हो जाएगी और ये इंटीरियर सिम भी देख लेंगे और ये अच्छा नए सवाब भी हो जाएगा। और ये हम दोनों भाई जो काफी बदमाश थे जमात के सबसे ज्यादा हम ही थे, तो हम दोनों चले, खाने को कुछ मिलता ही नहीं था। सुबह जो है पापा और चाय लेके गए थे, पापे लेके गए थे गोल पापे नहीं, वो और चाय के साथ पापा चाय, और दोपहर में आलू का कोई चीज होती थी जो ना सालन होता था भुरका होता था, उसके बीच की कोई चीज होती वो। तो जब एक दिन तो मैं बहुत तो मेरी हमें मैं अच्छा जो टूर पे जाता हूँ मैं यही करता हूँ, सबके साथ थोड़ा खाता हूँ फिर खामोशी से निकल जाता हूँ किसी अच्छी होटल में जाके सुकून से बैठ के बहुत सारा खाता हूँ, ये हमेशा से मेरी रवैया रहा है। तो वहां मैं जंगल में कहाँ जाऊँ, वहाँ कोई है ही नहीं होटल, होटल ही नहीं है वहां पे, कहाँ से होटल, तो वही खाता वहां पे रात को जो है ना बिरयानी मिलेगी आपको, बिरयानी मिलेगी कस्तूरी बिरयानी आपको खिलाएंगे आप खुश हो जाएंगे। तो रात को जो है उन्होंने बिरयानी थैली निकाली एक कपड़े की, जो तौल जो था ना तकिया, तकिए के गिलाफ था जिसके अंदर उन्होंने नाड़ा डाल के गिठा बनाया, तो पुड़िये बना के उसमें रखी हुई क्या है, उसको उल्टा उसमें चने नुक्कुल और खोपरा और ये बादाम एक दो मुश्किल से काफी हफ्ते बाद एक बादाम भी आया, वो ये है बिरयानी। मुझे तो चक्कर आ गया, मैंने खाया उसको थोड़ा सा, मैंने कहा कि बोला और कहीं वहां भाई पेट भर गया। उसके बाद नींद आया कभी, मैं उल्टा होता है सीधा होता है कभी कुछ होता है, मस्जिद में नहीं जहाँ नमाजों के लिए वो रखे जाते हैं कपड़े के वो थैलियां बना के, वो थैली पेट के नीचे रख के उल्टा लेता, जब उल्टा लेता वहां भाई उल्टे लेते हैं मस्जिद में आप, नींद नहीं आ रही क्या? मैं कहा नींद आए, मैं आपको इधर वह समाई व तारीख याद है आपको, नींद आए मैं आपको याद कर रहा हूँ। ओ भाई बिल्कुल जब नींद अच्छा आप सोए मैं आपको जाऊंगा। 3 दिन तक जो है उन्होंने इसी तरह मैं कस्तूरी बिरयानी और इसी तरह के बेहतरीन खाने और लज्जत से भरपूर वक्त हमारा गुजरा, और हर वक्त जो है अल्लाह याद आता था। उन्होंने कहा कि वहां भाई सबसे पहले पेट खाली करना पड़ता है, दिमाग काम नहीं करता अगर पेट भरा हुआ, और आप हैं खाने पीने के शौकीन, आपकी जहानत शैतानी है। उन्होंने मुझे कहा मेरे तो मेरे साथ मुझे जानता है लेकिन मेरे से थोड़ा सा बड़ा है वो, लेकिन वो आलिम दीन होगी। उसने कहा आपकी जो रैशनैलिटी शैतानियत है आपके अंदर कि आप नेगेटिव काम बहुत सक्सेसफुली करते हैं और डिमोलिश करना हो किसी चीज को कंफ्लिक्ट वो आप, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम आप नहीं करते। क्यों? इसलिए कि आपका पेट भरा रहता है, आपका पेट खाली रहना चाहिए जिसके नतीजे में आप कंस्ट्रक्टिव करते। तो हमारी तहजीब में जिसने बड़ा काम किया है ना, डिस्ट्रक्टिव काम नहीं किया, लेकिन वो भूखा था, पेट उसका भरा हुआ नहीं था। मोटा मौलवी और दुबला हकीम खतरनाक होते हैं। जो अल्लाह से डरता है वो मोटा कैसे हो गया, इतना मोटा कैसे हो गया, ऑफ में हो गया। तो अब ये ओबिसिटी वगैरह हो गई लेकिन आम तौर पर तो फैट इतना ज्यादा खाने की वजह से हो गया। तो जब उसका पेट भरा हुआ तो उसको दिमाग काम नहीं करता। तो वो हमारे जो वो थे हजरत साहब के बाद जब भी अब हमें आखिरी दिन उन्होंने हमें बिरयानी खिलाई थी, होते उबले हुए अंडों में, तो इसमें प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट सब कुछ वो खुद डॉक्टर है, तो हाईली न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन ये कि चूंकि बेचारे गरीब लोग हैं और यहाँ पर गोश्त हर महीने नहीं कटता, तो यहाँ पर प्रोटीन के लिए या तो आप मुर्गियाँ काटें या फिर, तो इन लोग बेचारे गांव वालों ने दोपहर में अंडे दिए थे तो हमने यही उबाल के डाल दिए, अब आगे खा, तो सबको दो दो अंडे दिए, मुझे तीन अंडे दिए क्या आप खा लें, प्रोटीन की कमी हो गई। तो बताने मतलब ये कि पेट तो आपको खा, तो ये रैशनैलिटी तो गारंटी नहीं करती है खैर की शनाख्त। बहुत सारे लोग बड़े रैशनल होते हैं क्योंकि वो खैर को नहीं पहचान पाते, उनके सामने से गुजर जाता है, वो नहीं पहचान पाते और हम नहीं पहचान पाते, इसलिए हम भरोसा करते हैं अपने बड़े लोगों पे जिनको दुनिया मानती है, उनकी जिंदगी है आपके सामने, उन्होंने पहचान से जिंदगी बुलाई 20 साल कोई मार खाता रहे, ऐसे ही आम आदमी होगा वो 20 ईयर तक कोई कोड़े खा ले, खाए ना कोई, ठीक है आदमी उसके यहीं पर रोक लेता।
इसके साथ ही आज की बताऊंगा।